الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अब हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है. सब मोजस मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो खामोशी से आके अपनी जगहों पर दोबारा तशरीफ़ फरमा हों, तो इंशाल्लाह ताला ताकि हम सहूलत के साथ अपना अगला जो हिस्सा है प्रोग्राम का वो शुरू कर सकें. तो तिलावत के दौरान आप लोग प्लीज़ खामोशी से आके अपनी जगहों पर बैठते जाइए. हाँ जी, सूरत आले इमरान में से आयत नंबर 144 से तिलावत करूंगी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا بِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
جزاك الله خير جزاك الله خير واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ یہ سب لے دوں
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انشاءاللہ تعالی آج ہم انہی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے ہمارا آج کا موضوع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن جو آج کل ہم سب گزار رہے ہیں یعنی ربیع الاول کے شروع کے 12 دن وہ کیسے تھے یعنی آج کے ہمارے اس ٹاپک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 دن ہم دیکھیں گے اور آخر میں پھر ہم اس کو آج کے مسلمان کے حساب سے دیکھیں گے کیونکہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ آج کا مسلمان ربیع الاول میں کیا کہہ رہا ہے میری نظر میں یہ ایک ادھوری بات ہے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے اور میں اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ آج کا موضوع بہت زیادہ ایموشنل ہوگا حقیقت میں میں خود صبح سے سوچ رہی ہوں کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں ربیع الاول کے موضوع پہ بہت کچھ کہا اور سنا گیا اور جب بھی لفظ ربیع الاول آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں عید میلاد النبی 12 ربیع الاول منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے جشن ولادت ہے کہ نہیں تو میں نے سوچا کہ مجھے تو اس موضوع پہ کچھ نہیں بولنا چاہیے بڑے بڑے عالم موجود ہیں ماشاءاللہ ایک اس کے حق میں دلائل دیں گے دوسرے اس کے حرام ہونے کے فتوے دیں گے تو مجھے آپ کو کیا لگے آج میں آپ کو بالکل وہاں لے کے جانا چاہتی ہوں اس پیاری شخصیت اور اگر آپ کہیں تو ہمارے آج کے ٹاپک کا ایک دوسرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 دن ہے جس کو بھی آپ سے محبت ہے وہ اس موضوع کو ایسے سننا چاہے گا جیسے ہم اپنی من پسند شخصیت کے لیے سنتے ہیں میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے اس سکول کے اندر موجود لوگوں کے کانوں تک اور مکسلر اور پیل ٹاک اور جہاں جہاں جس میڈیم سے بات باہر جا رہی ہے میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ثبوت پیش کریں کہ ہمیں آپ کے بارے میں سننا آپ کے بارے میں جاننا دنیا کے ہر کام ہر مشغلے سے پیارا ہے اور انشاءاللہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی کچھ عمل دیکھیں گے کہ وہ اپنے نبی کے لیے کیسے تھے کھانا پینا کام سب کچھ چلتے رہتے ہیں اس وقت وہی بندہ وہی بہن وہی ساتھی اس موضوع سے فائدہ اٹھا سکے گا کہ جو پورے دل دماغ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے سنے گا آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد ہمیشہ ہی درس سے پہلے درود پڑھتی ہوں آج اس موضوع کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو بھی کہوں گی کہ دل کے اندر خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آپ بھی پڑھیے تاکہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس محبت کو محسوس کر سکیں اور نہیں تو کم از کم اپنے کسی خاندان کے بزرگ باپ دادا چچا پھوپھا سسر اس کی بات ہو رہی ہو تو ہم جس طرح دل میں جذبات لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے تو ہم سب دل کی گہرائی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے لیکن دل میں کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنل ہے ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے, 144. آپ نمبر صرف لکھ لیں, بعد میں گھر جا کر اس کو کھول کے اپنے گھر میں موجود کسی بھی ترجمے والے قرآن پاک سے اس کو دیکھیے گا. ابھی آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پہ بھی کھولا گیا. یہ وہ آیتیں ہیں, اور اس سے اگلی آج کی چند آیتیں لے کر میں پہلے ان آیتوں کا خلاصہ رکھتی ہوں. یہ کب کیا ہوا, ترجمے پہ ذرا سا فوکس کیجئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں, پھر کیا اگر وہ مر جائیں. نوٹ کیجئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور کسی ڈکشنری کو کھول کے دیکھ لیں, کسی مسلک کے قرآن سے پوچھ لیں, قرآن کا یہ لفظ جو اوپر اگر عربی میں ہائی لائٹ کر کے دیکھ لیں, افا ام ماتا, پھر اگر وہ مر جائیں, او قتلا, یا قتل کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس دور کے لوگوں سے, تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے, کیا تم ان کے بعد دین چھوڑ دو گے, اپنی مرضی کا کام کرو گے؟ ٹھیک ہے, یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. رہ کی بات کسی نبی کی موت کی بات ہے یا کسی امتی کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. اگلی آیت دیکھیے گا, 145. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کسی نفس کی یہ جرت نہیں, یا اپنے لفظوں میں کہہ لیے کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. سچ ہے نا, دن رات ہم اس کی گواہیاں لیتے ہیں, کوئی نہیں مر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, مگر اللہ باذن اللہ ہی کتاب مؤجلہ, مگر اللہ کا حکم ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ موت کا وقت تو لکھا ہوتا ہے, ہر شخص اپنے وقت پہ ہی مرتا ہے, کسی کے لیے پہلے یا بعد والی بات نہیں. چھوڑو, دنیا میں تو آئے جانے کے لیے تھے, یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ, لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اگلی آیت پہ ذرا توجہ کرتے ہیں. 145. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے. یعنی جس نے دنیا کے کام کیے, دنیا کے لیے کیے, دین کے کام کیے مگر دنیاوی فوائد کے لیے تھا, جو مانگے گا ہم اس کو ویسا ہی دے دیں گے. اور اس کے برعکس, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, ساتھ اپ ماؤس کے ساتھ ان کو دکھائیے جہاں سے میں پڑھتی ہوں. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ آخرت کا ثواب پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. ریاکاری کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی, سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اگر کوئی صرف دنیا کے کاموں میں کھپ رہا کہ میرا جینا مرنا, یہ دونوں کو دنیا مل جائے گی, اللہ ضائع نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی آخرت میں چاہتا ہے, کس کو؟ صرف دین کے کام کو, نماز روزے کو نہیں, وہ اپنی دنیا داری کو بھی آخرت کو سامنے رکھ کے چلاتا ہے, بچوں کے کام کرتا ہے, مرد ہے تو کماتا ہے, عورت ہے تو گھر کا کام کرتی ہے. نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری دی ہوئی ذمہ داری ہیں, میں آخرت میں اس کا بدلہ چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے. تو کام دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں, نیت شرط ہے. اور نیت میں کیا شرط لازمی ہے؟ کہ میں اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوں گی. اللہ تعالیٰ کا کلیہ کیا ہے آخرت کے معاملے میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے. یہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے ارادے کر لیتے ہیں, انہی کے لیے یہ سب کچھ ہے. وَقَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فی سبیل اللہ وما دعفو وما استکانو واللہ یحب الصابرین. اس پہ غور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے گا، یہ اب ان کی خوبیاں، کیونکہ ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے انہی کو ملنا ہے. فرمایا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی، ان سے وہ نہ تو دل شکستہ ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور وہ باطل کے آگے سر نگوں بھی نہیں ہوئے، اور اللہ ایسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے. یہ صحابہ کرام کی خوبیاں ہیں. ہر نبی کے قریب کے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے نبی، ہمارے پیارے نبی کے ساتھی تو ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان پہ دعا کیا ہے، یہ آپ کی میرے یاد کرنے کی دعا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کی دعا بس یہ تھی، کیا؟ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. دیکھیے، کام بھی اللہ کے رستوں میں کرتے ہیں، کرتے بھی اللہ کے لیے، اور ڈر کیا کہ اس میں جو کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا. یہ محبت کا انتہائی درجہ ہوتا ہے. محبوب کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لو، آخری وقت تک کمی رہی جاتی ہے، دل نہیں مطمئن ہوتا. تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں اور خامیوں کو دور کر دے، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، یعنی نیکیاں کرنے میں بھی ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، وہ بھی معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے. یعنی ہم بار بار اکھڑ جاتے ہیں، ہمارے دل بھی اکھڑ جاتے ہیں، ہمارے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں، تو ان کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کیا پتہ چلا کہ جو کام اپنی کوششوں سے نہیں ہوتا وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. کیا ہوا ان کی اس دعا کے ساتھ؟ آیت 148 کو دیکھتے ہیں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کیوں نہ سنے جو اتنے پیار سے رب کو پکارے. اسی لیے فرمایا، آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا، یعنی انہوں نے آخرت مانگی، دنیا خود ہی آ گئی. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ صرف دنیا پالے نہ پالے اس کا نصیب ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا اس کو پہلے دنیا ملے گی. یہ بات بتا دی، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. یہ تو تھا صحابہ کرام کی کوششوں کو خراج تحسین، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں بات کی. اب یہ ڈور کھول دیجئے، پورا ڈور کھلا چھوڑ دے اور اس کو بند نہیں کرے کوئی بھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میرے آپ کے لیے آخری آیتوں میں گائیڈ لائن ہے. یا ایھا الذین آمنو، اپنے دل پر لیں اس کو. ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ایمان پہ مارے. اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان والی اور زندگی اسلام والی کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے پیار سے کہتے ہیں، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے، یعنی تمہاری مت مار دیں گے، یا تمہارے عزائم، تمہارے مقاصد، تمہارے نظریہ حیات سے تم کو دوسری طرف لے جائیں گے، اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ فتن قلیبو خاسرین، اور تم نامراد ہو جاؤ گے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بینکرپسی، یعنی نہ پھر تمہاری دنیا بننی ہے نہ آخرت. تو پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ان کو اگر چھوڑ دیا تو ہماری تو مدد بند ہو جائے گی، اور ہم تو ان کے بغیر جی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو تم نے ان پہ نظریں لگا رکھی ہیں کہ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، پھر وہ پیچھے نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا یہ عزم بن جائے، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کی یہ سوچ بن جائے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تو اس کا کفار کے اوپر کیا اثر آتا ہے؟ آخری آیت ہمارے آج کے اس لیسن میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، वो 151 में है, सनुल की फी कुलू बिल्लजी न कफरुर रोबा बिमा श्रकु बिल्लाही मालम युनज़िल बिही सुल्ताना वमा वाहुमन्नार वबी समस्वज़्ज़ालिमीन। कि जब मुसलमान उस दर्जे के मुसलमान बन जाएंगे जो मतलूब है, उनका मेयार इस ईमान का वही हो जाएगा जो मतलूब है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में क्या करेंगे। अन करीब वो वक्त आने वाला है जब हम उनकरीने हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, यानी कुफार के दिलों में मुसलमानों का रोब आने लगता है, जब मुसलमान अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की बात मानने लगते हैं, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की। इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरी है वो क्यामगा जो इन जालिमों को नसीब होगी। तो ये हैं वो आयात जिसकी रोशनी में आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन क्या थे। आयात चूँकि बहुत अहम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं माशाल्लाह आप लोगों में से, तफसीर में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अब इसको बंद कर दीजिए स्क्रीन को और हम जैसे सिर्फ सुनेंगे, और अब आप में से जो लिखना चाहे लिख ले, लेकिन अपने आप को जहनी तौर पर ले जाइए कि ये आयतें कहाँ नाजिल हो रही हैं। जिन लोगों ने सूरत आले इमरान तफसीर से पढ़ी है वो इन आयतों को सुनते ही समझ गए कि इससे पीछे 2-3 रुकू मुसलसल ग़ज़वे उहद पर तबसरा। और जो हमारे गेस्ट हैं इधर आज आप लोग माशाल्लाह आप में से, तो उनको बता दूं, स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक आएगा हमारी, इससे अगले वीक में ये आयात शुरू हो जाएंगी। आज सिर्फ आपको इसमें से वो टॉपिक दूंगी जो लेना है, इसकी पूरी तफसीर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी ये रूहुल कुरान क्लास में आने वाले वीक्स में करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सूरत आले इमरान शुरू कर चुके हैं। बात ये थी कि ग़ज़वा उहद मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसा मुश्किल वक्त मुसलमानों पर आया कि 3,000 कुफार के मुकाबले में 1,000 का एक छोटा सा गिरोह तैयार हुआ, उसमें से भी 30% यानी 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मुकामे शौत पे अल्लाह के नबी का साथ छोड़ गए। याद रखिए, ये कहना आसान है लेकिन जब पड़ती है तो एक हक के रास्ते से एक बंदा जाता है तो इमारत हिलने लगती है, कहाँ 300 चले गए। उनको देखकर बाकियों ने भी सोचा, लेकिन अल्लाह ने उनको संभाल दिया। कार लोगों पे तो भरोसा करना नहीं, मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो तब शमशीर पे करता है भरोसा। वो 600-700 लोग थे चल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लम ने बहुत खूबसूरत प्लानिंग की हुई थी, आपने लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी कि आप यहाँ खड़े होंगे, आप इधर खड़े होंगे, इधर होंगे, और यही मैनेजमेंट होती है। अच्छा खाना कौन खिलाता है, जो अच्छी तरह सर्व करता है। आप सब खवातीन, आपको पता है थोड़ी सी जगह में भी अच्छी मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। मैं इसकी मिसाल जहाज की देती हूँ, 200-300 लोग एक छोटी सी गार नुमा जहाज में खाना खा लेते हैं ना। इसी तरह अच्छा लीडर वही होता है कि जो थोड़े से रिसोर्सेज को यूज करके फायदे बहुत दे। अल्लाह के नबी सल्लम से प्यारा कोई लीडर हो नहीं सकता, इस पर एक पूरा टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपाही सलार के तौर पर, अगर आप सुनना चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपने एक दर्रे के ऊपर 50 लोगों को मुकर्रर किया। दर्रा जैसे एक छोटी सी रॉक होती है जिधर से पीछे से दुश्मन के आने का खतरा हो सकता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर नाम के एक सहाबी को आपने खड़ा किया, 50 लोग उस दर्रे पे खड़े कर दिए, और आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी कि फतह हो के शिकस्त, हम जिए के मरें, दुश्मन इधर रहे न रहे, हत्ता के तुम वहां खड़े ये देख रहे हो कि परिंदे हमारे सर नोच के खा रहे हैं, यानी मीन हर सूरत तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। अब जरा सा हम सब अपने साथ रहते हैं, इस चीज को साथ लेके सोचते हैं, इतात रसूल की बेहतरीन निशानी क्या थी कि तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। इसके अलावा बाकी लोगों को आपने नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम जैसे खूबसूरत लीडर को इस चीज का यकीन था कि ये वो जगह है कि जिसके पीछे से दुश्मन के हमले का खतरा है। बाकी पहाड़ ऊंचे थे, वहां से दुश्मन आता नहीं। यही हुआ, अल्लाह की बात मानने वालों को हमेशा फतह होती है, और अल्लाह के रसूल की बात मानने वालों को तो दुनिया में भी फतह मिलती है और आखिरत में भी उनके दर्जे। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लम की सब बातों पर पूरी तरह अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जंग जीत गए। जब जंग जीते और दुश्मनों में हड़बूंग फैली, यानी उनके अंदर एक अबतरी फैली, तो वो भागने लगे। उस दौर में क्या होता था कि दुश्मन अपने साथ जो भी लेकर आते थे, यानी दोनों पार्टीज अपने साथ असलहा और हथियार और ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते थे ना घरों में, वहाँ ये तो नहीं था कि पीछे से कोई मदद आनी है। तो जब कोई कौम शिकस्त खाती, यानी अगर मुसलमान शिकस्त खाते तो वो भागते, तो उनकी चीज़ें, उनकी तलवारें, उनकी जिरहें, उनका खाना पानी, बकरियाँ ऊँट, वो सब काफिरों को मिल जाते हैं। यही चीज़ काफिरों के साथ होनी थी। दुश्मन जब भागे तो सहाबाए कराम ये समझे कि जंग ख़त्म हो गई, दैट्स इट। सब उठे और अपनी अपनी जगह से जाकर माले गनीमत को जमा करने लग गए। गलत फहमी सिर्फ इतनी हुई कि जंग ख़त्म हुई, और जंग ख़त्म हो गई थी। बस एक काम नहीं करना था जो 40 सहाबा से हो गया, सहवन, जान के नहीं किया, भूल गए। उन्होंने सोचा कि नबी सल्लम की जो इंस्ट्रक्शंस थी ना, ये सिर्फ जंग के होने तक थी। जंग खत्म हो गई, अब हम अपनी जगह पर खड़े रहे, दिफा किया, बात खत्म, तो ये सारा मालो असबाब तो ये लूट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा। एक ये बात थी, दूसरी बात है लेयर हो गए। जैसे हम प्रोग्राम के शुरू में बड़े कॉन्शियस होते हैं, आवाज़ भी कांप रही होती है, टांगे भी कांप रही होती हैं, फिर आधा प्रोग्राम गुजरे तो अब कहते हैं अब सब कुछ ठीक ही हो गया ना, रिलैक्स होने लगते हैं। ये गलती थी। जूं ही वो सहाबा कराम जो वहाँ मुतय्यन थे वहाँ से हटे, सिर्फ 10 लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ रह गए, और वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं अल्लाह के बंदो आजो आजो, लेकिन वो बस माल की मोहब्बत कह लें, यानी इंसान थे, सहाबा बशर थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो गए और माले गनीमत चुनने लगे। यही हुआ जब खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और उनके बाकी साथियों ने देखा कि दर्रा खाली हो गया, सिर्फ 10 लोग हैं उसकी तयनात, उसके हिफाजत पे, तो का इनको तो हम पकड़ेंगे। वो जाते हुए मक्का की तरफ वापस जा रहे थे मदीना से, पीछे से उसी दर्रे के रास्ते से आगे आए, और उन्होंने फिर आके एक हमला किया। आप सोचिए ना, ऐसे गज़वे उहद अगर अल्लाह आपको ले जाए, कभी जाके देखिएगा मैदान उहद, मदीना के बिल्कुल करीब है, ज़ियारतों में हम लोग जाते हैं, और मैं वहाँ खड़े होकर सोचती हूँ कैसे यहाँ जंगे, यहाँ इंसानियत के फैसले हुए हैं। आज हम मुसलमानों के पास इतना कुछ है, और अभी तक हम कुछ कर नहीं पाए, उनके पास था क्या। यानी ऐसे वादी है, नीचे गहराई में जंग हो रही थी और ऊपर से पीछे से दुश्मन आ रहे थे, तो जब वो दर्रे से पीछे से दुश्मन आए तो मुसलमान तो माले गनीमत चुन रहे थे, उनको बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ। जब बिल्कुल दुश्मन सर पर आ गया, खबर है, ओहो ये क्या हुआ, अब हथियार तो पास नहीं, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। फिर एक डिसऑर्गनाइज कैफियत हुई, जो अक्सर हमारे प्रोग्रामों के एंड पे हो जाती है। हमारी शादियों के एंड पे तो लोग फिसल रहे होते हैं, और खाने की देगें हट रही होती हैं, और घी जमीन पे पड़ा होता है ना। ये भड़ू खड़बूंग हुई जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। वो ऐसे शहीद हुए कि जाहरी बात है, और अल्लाह के नबी पुकार रहे थे, या इबादी लैया, या इबादी लैया, मेरे अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, मेरी बात सुनो, मैं हूं। अब हुआ क्या कि हजरत मुसब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु, उनकी भी एक कहानी है, करोड़पति माँ बाप के बच्चे थे आज की जुबान में। आप कह लीजिए कि मक्का का वो नौजवान जब पहन ओढ़ के अच्छे घोड़े, आज की अच्छी गाड़ी में निकलता था, तो लड़कियां लड़के दरवाजों से झांकते थे कि मुसब निकल रहा है, इतना खूबसूरत और दौलत वाला था। लेकिन याद रखिए, जिसको कुरान की और नबी की मोहब्बत की और इस्लाम की दौलत मिलती है, उसको फिर ये कुछ नहीं लगता। यही हुआ, मुसब बिन उमैर उस जंग में आए, अल्लाह का हुक्म देखिए कि शहीद हो गए। आज जिनको नहीं पता, पहली दफ़ा सुन के जाइए, मुसब बिन उमैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, सिमिलर थे। किसी ने उनकी डेड बॉडी देखी तो वो जैसे कहना चाहिए कि बात फैल जाती है सुनी सुनाई, एकदम किसी एक के मुंह से निकली कि अल्लाह के नबी सल्लम शहीद हो गए। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बात ऐसे गई, वो कहते मुंह से एक दफ़ा निकलती है फिर बात घर घर जाती है, सहाबे किराम में और मैदान में ये खबर फैल गई कि नबी सल्लम शहीद हो गए। अब वो कैफियत थी कि जब सहाबा सोच रहे हैं कि अल्लाह के नबी चले गए, वक्त कितना मुश्किल है, मैदान जंग में है, दुश्मन आया खड़ा है, और आपका लीडर खत्म हो गया, कहने की बात है। उस वक्त फिर बड़े बड़े सहाबा कराम की हिम्मतें छूट गई। ऐसे वक्त में वो लोग जो ऊपर से इस्लाम का, वो लोग जो ऊपर से तो इस्लाम था लेकिन दिल में निफाक था, या भी कह लें कच्चे ईमान वाले, नए नए मुस्लिम, अभी ना कुर्बानियां दी थी, ना हिजरतें दी थी, ना इस्लाम के लिए मुश्किलात से गुजरे थे, उन्होंने दबी दबी आवाज में कह दी, अरे देखो अब हमारा क्या बनेगा। देखिए आज की जुबान में समझे, एक नॉन मुस्लिम मुल्क सुपर पावर और एक छोटे से मुस्लिम मुल्क की लड़ाई हो रही हो, और इतने में मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान की भी डेथ हो जाए, तो लोग कहेंगे ना अब तो जाओ जाके उनकी जूतियां सीधी कर दो, हमें कुछ ना कहना, हमारा लीडर मर गया। कुछ लोगों ने ऐसी बातें की, चलो अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाते हैं और उसको कहते हैं आ जाओ तुम हमारा लीडर बन जाओ, अबू सुफियान से अमान ले लो, ये वो और दिस एंड दैट, जो नहीं जितने मुतनी बातें, ये जो हमारे यहाँ बातें होती हैं ना जिसको आप कहते हैं आओ अब बातें करें, वो असल में होता है आओ अब गीबतें करें, आओ अब ज़रा अपनी नेकियाँ दूसरों को दें, आओ अब ज़रा की कराई पे मिट्टी डाल दें, हम नेकियाँ करके उठते हैं तो वहाँ से गीबतें करके उठते हैं। बस दफ़ा यही हुआ, लोगों ने बातें शुरू कर दी, कोई कहने लगा देखो देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के रसूल होते तो कत्ल कैसे होते, ये झूठ था, छोड़ो। कुछ को ये गम पड़ गया कि अब अल्लाह के नबी के बाद मक्का वालों ने तो हम पे और सख्तियां करनी है, चलो चलो जल्दी जाके वापस अपने आबाई दीन पे चलो ताकि हमें कुछ ना करें। देखिए ये वो वक्त होते हैं जिस वक्त बंदे को ये पता चलता है, लिख लें एक जुमला, जैम है आज के इस लेक्चर का, कि जब दीन का कोई तकाजा और हमारी दुनिया का कोई तकाजा एक साथ उठे फिर आप किसको चूज करते हैं, ये वक्त हमारी असल खोलता है। 98% ऐसे वक्तों में हम फिसल जाते हैं, मजबूरी थी, घर में काम था, बच्चे रो रहे हैं, शौहर हैं, वो है, ये आम हालात में बिल्कुल नहीं किसी को पता चलता कि वो ईमान के किस दर्जे पे है। फारिग वक्त था जाके अल्लाह के रास्ते में भी कुछ वक्त दे दिया, फारिग थे घर में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, इट्स फाइन, बट मुश्किल कब पड़ती है, जब हमें कोई अपनी जाती जिंदगी की मुश्किल आती है फिर हम कहते हैं नहीं अब क्या करें। सहाबे कराम ने ऐसे वक्त में अपनी सदाकतें साबित करके ये बात बता दी कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकती, और फिर यही हुआ। खैर ऐसे वक्त में फिर उम्मत मुस्लिमा की कश्ती जो थी वो डोलने लगी। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए थे, हम अब गज़वे उहद से वापस आ जाते हैं इधर, ये आपको तफसीर की क्लास में अगली चीज़ें सुनाऊंगी, लेकिन ऐसे मौके पे एक वक्ती तौर पे खबर पैदा करके ये क्योस पैदा किया गया, मुसलमानों को जहनी तौर पे तैयार कर दिया गया कि आज तो ये रिहर्सल हुई है, आज तो ये तुम्हारी जहन साजी की गई है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हकीकत में हर इंसान की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये जो आयत आपके सामने रखी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये उस मौके पे नाजिल हुई थी, उस वक्त आप जख्मी हुए थे, फौत नहीं हुए थे, आप दुनिया में ही थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब ये वक्त एक दिन आएगा। और ये हुआ कब हुआ, यानी गज़वे उहद कब हुई थी, जो साथी सीरत से बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है आप सारे ही उन्हीं लोगों में से हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। पहले साल में कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे साल के शुरू में बदर हुई, तो तीसरे साल के शुरू में उहद हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत के कितने साल के बाद विसाल फरमाते हैं बताइए, 10 साल गुजारे ना मदीना में टोटल, 3 निकाल दें, यानी इस आयत के 7 साल बाद हकीकी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से वापसी का वक्त आया तो सहाबा कराम को फिर एहसास हुआ कि ओहद वाली बात तो झूठी थी लेकिन ये सच्ची है। और उस मौके पे हजरत उमर जैसे शख्स का जो मामला हुआ था, आज देखिए कि हमारा टॉपिक है रबीउल अव्वल और आज का मुसलमान। जो ही रबीउल अव्वल का मौका आता है लोग बाज़ दफ़ा खुशी के नाम पे जश्न विलादत नबी कहते हैं ना, आज मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखूंगी जिसका किसी इल्मी रिवायत से ताल्लुक हो या आपको मैं कोई इधर के दलाइल उधर के दलाइल दूं, नहीं, आज पहला लेक्चर है इस मौजू पे, आगे देखिएगा डिफरेंट बातें आपको खोल के किताबों से पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा रबीउल अव्वल के महीने के साथ ही क्या कहते हैं, जश्न विलादत नबी, नबी सल्लम का मिलाद है, आपकी पैदाइश है। और अमूमन आप देखिए कि मुसलमानों के घरों में टीवी चैनल्स पे मीडिया के थ्रू 12 रबीउल अव्वल को क्या कुछ होता है, आज एंड पे मैं सिर्फ आपको 1-2-3 मिनट का क्लिप दिखाऊंगी तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, जो बात पहले ही दूसरों को बताए वो मैं क्यों बताऊं, कि आज रबीउल अव्वल के साथ ही हमारे दिल में खुशी का तसव्वुर आता है और एक चहल पहल सी दिखती है और उसका इजहार हर बंदा अपने हिसाब से करने लगता है। लेकिन आइए जरा मैं आपको एक डायरेक्टली ले चलती हूँ उस घराने में, अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना कितनी बार आया, 63 बार आया, 63 times, 63 में से 40 साल जब शुरू के थे वो कब थे? जब आपको भी नबूवत नहीं मिली थी, सब जानते हैं। आप एक आम फर्द की तरह माशरे के बहुत यूनिक बाखलाक बाकिरदार शख्सियत थे कि दुश्मन भी आपको सादक और अमीन कहते थे। अब वो सारे मामला जब हुए और हुआए तो उसके बाद नबूवत मिल गई। नबूवत सब जानते हैं, हम आम जुबान जदे आम में हम कहते हैं 23 साल, लेकिन असल में 22 साल कुछ महीने बनते हैं, जिसमें 13 साल मक्का के और 10 साल मदीना के थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में 63 टाइम रबी अव्वल का महीना आया। नबी बनने के बाद, यानी पहले तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे ना, वो 12 रबी अव्वल को अगर पैदा हुए, मैं उसके इख्तलाफ पे भी अभी कोई बात नहीं करती कि 12 को हुए नहीं, लेकिन एक बात लिख लें और फिर उस पर ही हम बात शुरू कर दें कि विलादत को भी छेड़ते नहीं हैं, लेकिन ये 200% लोगों से ऑथेंटिकली पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक 12 रबी अव्वल को ही थी। आप में से किसी को इससे कुछ अलग पता है तो हाथ खड़ा कर ले। पैदाइश क्यों नहीं पता? आप कहते 6 कॉल है, मैं आपको तोहफे में एक दूं तो आप लेके जाइए, आप यहाँ आके पढ़ना चाहें हमारी इस बुक, इसमें भी सीरा की बुक्स पढ़ी हैं, बुक स्टोर्स में भी हैं, छोटी बुक उठा लें या बड़ी उठा लें। रहीको मख्तूम मोटी बुक है, मोहसिन इंसानियत जहाँ रखी भी होती है, हम लोग वीकडेज में पढ़ते भी हैं, तजलियात नबूवत भी है, उसमें हसना भी है, 20 किताबें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। हर किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक 12 रबीउल अव्वल है। विलादत के बारे में 6 कॉल है। रहीको मख्तूम मैं आपको रिकमेंड करूँगी, 6 डिफरेंट अकवाल हैं, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल, कोई कहता है 9 रबी अव्वल, कोई कहता है 27 रमजानुल मुबारक, कोई कहता है कि ये किसी और महीने में। वजह क्या है? हम उस पर नहीं बहस करते। वजह इसलिए कि जिस दिन आमना के घर एक बच्चा पैदा हुआ था ना, वो एक आम बच्चा था, जैसे अरब में दूसरे बच्चे पैदा होते थे। किसी को क्या पता कल ये बच्चा दो जहान का सरदार बन जाएगा। उस वक्त कोई लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, लोग सालों से याद रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल सबको यकीन है, क्योंकि आमुल फील, अबरहा के लश्करों ने जिस साल हमला किया था उस साल नबी सल्लम की पैदाइश हुई थी, ये डेफिनेट बात है। लेकिन दिन बर्थडे मनाना कुछ भी नहीं, ये उस दौर में कोई लिखता भी नहीं था। बट वफात क्यों डेफिनेट है? उसकी वजह यह है कि वफात जब आपकी हुई तो आपके 1,00,000 से जायद चाहने वाले थे उस वक्त। अभी सुनाती हूँ आपको, एक एक आंख रो रही थी अल्लाह के नबी की वफात पे। और वल्लाह ही दुख के साथ कहूंगी कि आज जिन 12 दिनों में रबी अव्वल 1, 2, 3, 4, आज भी 2 तारीख है ना रबी अव्वल की, 2 ही है ना आज, और आप देखिएगा 3 होगी आज, 3 शायद होगी जी, 3 ही है आज, दिसंबर के साथ चल रही है ना इस साल हमारे मुल्क में। तो बहरहाल आप देखिए कि हमारे यहाँ ये 12 दिन किस हालात में चलते हैं, मनाए जाते हैं। लेकिन नबी सल्लम की ज़िंदगी के आखिरी 13 दिन आपको अभी सुनाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कहने का मतलब है कि विलादत 12 को ही थी, इसमें कोई शक नहीं। वफात आपकी 12 थी क्योंकि सब ने उसको नोट किया था। क्या था, कैसे था, और आज हम मुसलमानों का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया, पहले आप ये सुन लीजिए कि नबी सल्लम एक इंसान थे। कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने आपकी नाते से किसी बड़ी बात का जिक्र किया ना, तो आपको अब्द कहे सुबहान अल्लाज़ी असरा बियाबदीही लैला मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। सूरत बनी इसराइल की पहली आयत है, 15वें पारे की भी पहली आयत बनती है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर ऊपर ले गया। फिर इसी तरह सूरत फुरकान के शुरू में तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। पाक है वो बरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे के ऊपर कुरान उतारा, फुरकान उतारा, ताकि दुनिया वालों को डराए या आगाह करे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को मनाया जाता है ना, सेलिब्रेट किया जाता है, वो भूलती नहीं है। मैं ज़रा से एक साइड पर रख के आपसे एक सवाल करती हूँ, आप लोग ज़रा सा मुझे उसका जवाब देना चाहें। आप सब नॉर्वे में रहते हैं ना मोस्टली, शायद कोई बाहर से एक आध माँ बहन किसी की सास आई होंगी, लेकिन बेसिकली हम सब पाकिस्तानी है ना। मैं एक सवाल पूछूंगी, 3 सेकंड के अंदर सब हाल वाले उसका जवाब दें। पाकिस्तान कब आजाद हुआ, बोल दीजिए साल, सब बोल दें, सबको हक है। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आजाद हुआ, 15 अगस्त। साल कौन सा था, 47 था ना जी, शाबाश, आप सबका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये क्यों याद है हमें? हम नॉर्वे में हैं, मैं तो पता नहीं 10 मुल्कों से घूम के नॉर्वे पहुंच गई पाकिस्तान छोड़ने के बाद से अभी तक। मुझे क्यों नहीं भूल रहा? क्योंकि हमने पैदा होने से लेके आज तक देखा है। 14 अगस्त को छुट्टी होती है और 14 अगस्त के बाद हम अगले दिन सुनते आज इंडिया में था, याद है? फिर हमें ये भी याद है, मुझे अच्छी तरह याद है अपने, अब यहाँ ये तो आखिरी 10-12 साल कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ों में आ गए ना, तो पता होता था कितने साल हुए हैं। साथ ये भी कहा जाता था 40वां, 41वां, 42वां यौमे, क्या कहते हैं उसको, यौमे आज़ादी मनाते हैं ना, जो सेलिब्रेट, अगर बिलफर्ज हर 14 अगस्त को ना सेलिब्रेट किया जाता तो हमें याद रहता? नहीं याद रहता। बस ये बात है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 63 सालों में, 63 ईयर्स में, उनकी माँ पहले 2 साल, फिर उनके पहले दादा, यानी माँ 2 साल करती, फिर दादा करते, फिर चचा करते, तो सबको याद हो जाना था। बात वाज है ना, किए कोई नहीं, किसी ने पता ही नहीं था, इसलिए एजम्पशंस ही हैं। बहरहाल फिर उसके बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी बनते हैं तो उसके बाद के हालात क्या हुए, आंखों का तारा बन गए। आपका किरदार तो लोगों को पहले भी बड़ा अच्छा लगता था, अब आपके मिशन के रास्ते के साथी बने। ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी और इसमें नबियों के साथ रहने वालों की जो खूबियां थी ना, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे वो खूबियां दे दे और आप अपने लिए मांग लें। फमा वहनु वमस्तकानु, दीन पे इतनी मुश्किलात गुजरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबवी जिंदगी में इतने बड़े बड़े चैलेंज आए, घर छोड़ने पड़े, हिजरतें करनी पड़ी, जंगें लड़नी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी, कौन सबसे आगे बढ़े? आपसे मोहब्बत का दावा करने वाले लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, ना वो अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन अगर मैं समझाने के लिए कह दूं कि वो आगे बढ़े जो आशिकाने रसूल थे, जो नबी के मुखड़े को देखने के लिए तरसते रहते थे, वो सहाबा आगे बढ़ते थे हर चैलेंज के मौके पे, कि जो नबी से इतना प्यार करते थे कि आपके पसीने के कतरे अपनी शीशियों में डाल के उसको इतर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और आप वो थे कि जब वुजू करते थे तो सहाबा उस वुजू के पानी को ज़मीन पे नहीं रखने दे गिरने देते थे, उसको उठाकर अपने जिस्म पे मलते थे। और नबी के सहाबा आपसे कितनी शदीद मोहब्बत करते थे। आज मैंने आपको फिर कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाना चाह रही, वरना पूरा टॉपिक मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामतें, एक मीडियम साइज़ की बुक लाइब्रेरी में भी रखी हुई है और पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसकी नेट पे ऑडियोज मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाजे, डॉक्टर फजल अल्लाह साहब की बुक है, मैंने खुद पूरी बुक पढ़ाई है, कि जब नबी से मोहब्बत होती है तो उसके तकाजे क्या हैं, वह वहां से पढ़िए, मैं आज सारा कुछ ना डालूं तो बेहतर है। अब हुआ क्या कि वो मोहब्बत के दावेदार थे, लेकिन बदर में आगे, उहद में आगे, आप कहेंगे इनको जंगों का शौक होगा, तो छोड़िए जंगों को, बाकी अमली जिंदगी में इनका क्या हाल था। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो को देखिए या अब्दुल्ला बिन उमर को देखिए, मारूफ थे इस बात पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यानी जो आपने कह दिया उसको करने के लिए मड़ मिटते थे। सफर पे हैं इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो अपने गुलाम नाफे के साथ, रास्ते में एक जगह कहा ऊंट रोको, रोक दिया, उतरे नीचे जरा से साइड पे होके इस तरह बैठ गए जैसे कजाए हाजत के लिए यानी वॉशरूम यूज करने के लिए बैठते हैं, उस दौर में लोग खुली जगहों पे जाते थे। उसके बाद बैठे और उठ के आगे वापस, गुलाम ने जुरत करके कहा कि आका मैं देख रहा हूं कि आपको हाजत कोई नहीं थी, फारिग नहीं हुए, फील कराया आपने, पोज दिया बस और आप आ गए हैं, तो ये क्या बात हुई? कहा ए नाफे, इसलिए कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बार इसी रास्ते से गुजरा था, जैसे आज तू मेरे साथ है ना, उस दिन मैं नबी के साथ था, तो मैंने जब जब मैं यहां पहुंचा था तो आप अपनी हकीकी जरूरत से इस जगह पे फारिग हुए थे, आज मैं यहां से गुजरा हूं तो मैंने सोचा कि मैं ये सुन्नत क्यों ना पूरी कर लूं, सिर्फ आपकी मोहब्बत में यहां बैठा हूं। देखिए सहाबा कराम वो थे जो अल्लाह के नबी को पूरा कॉपी करते थे। आज लोग कहते हैं कॉपी ना करो, नकल ना मारो, अल्लाह की कसम अगर दुनिया में नकल मार के कोई कामयाब हो सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल मार के हो सकता है। आपके बेटे उनकी नकल मारें, आपके शौहर मारें, आपके भाई मारें जिस्मानी हाल हुलिये में क्योंकि वो मरते, और आप और मैं उम्मत की बेटियां, उम्मत की माएँ, नबी की बेटियां, हम आपके अजवाज मुतहरात की नकलें मारें, जाइए दुनिया और आखरत की कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, मुझे इनकी नकल मारने का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की अलामत क्या थी। सहाबा आप पढ़िए, यहाँ इसी जगह जहाँ मैं आज बैठी हूँ, हर दिन मंडे से थर्सडे हम कोई उज़र हो तो हो आधा घंटा बुखारी शरीफ में से हदीसें पढ़ते हैं। आप पढ़ के देखिए, सहाबी हदीस बयान कर रहे हैं और बयान करते करते अपना बटन खोल देता है। सहाबा ने कहा कि आप ये बटन क्यों खोल दिया? कहा इसलिए कि इस वक्त जो नबी सल्लम की बात तुम्हें बताने लगा हूं ना, जब नबी सल्लम मुझे बता रहे थे तो आपके कुर्ते का बटन खुला हुआ था, तो मैंने कहा आपकी मोहब्बत में मैं भी खोल दूं। ये मैं क्यों बता रही हूं? इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि नबी सल्लम आशिका ने नबी नहीं थे, वो नबी सल्लम से मोहब्बत नहीं करते थे, वो दीवाने नहीं थे, वो सरफरोश थे। वो तो इतना प्यार करते थे, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आया, चेहरा मुरझाया हुआ है, कहा मेरे प्यारे साथी तेरा तो चेहरा इतना खिला रहता था, आज इतना दुखी क्यों है? कहा अल्लाह के नबी बस आज एक ख्याल आ गया और उस ख्याल ने दुखी कर दिया मुझे। कहा क्या ख्याल आया? अच्छा हम अपने ऊपर लें, कोई किस्त देने का ख्याल आ गया, कोई बच्ची की रिश्ते की बात है, कोई बेटे के घर की बात है? नहीं। कहा अल्लाह के नबी आज ख्याल क्या आया है कि मैं भी मदीना में रहता हूँ, आप भी मदीना में रहते हैं, मैं अपने घर में काम काज में होता हूँ, एकदम मेरे दिल में आपकी हूक उठती है, मोहब्बत होती है ना, ये इजहार मांगती है, इजहार ना करे तो मोहब्बत भी बुझ जाती है। कहते मेरे दिल में आपकी मोहब्बत आती है, हाय मैं आपको देखूं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं आई मिस हिम, आई मिस यू, तो मैं फौरन वहां से उठता हूं, मैं मस्जिद नबी में आता हूं, आप बैठे हैं कभी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, मैं एक नजर आपको देखता हूं, फिर मैं वापस चला जाता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं। कभी मैं अपनी तिजारत में होता हूँ, कारोबार में होता हूँ, एकदम मुझे आपकी मोहब्बत आती है, आपकी याद सताती है, मैं वहाँ से आता हूँ बस आपको देखता हूँ, देख के चला जाता हूँ, मोहब्बत में कोई बहुत कहने बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। कहा अच्छा फिर अब क्या हुआ? कहा आज जिस ख्याल ने मुझे दुखी कर दिया, क्या आज दुनिया में तो मैं आपको आता हूँ और देख जाता हूँ, पर कल क़यामत में तो मामला फ़र्क है, मैं जन्नत में चला भी गया लेकिन अपने आमाल के मुताबिक मुझे ये पता है कि मैं किसी शुरू की दूसरी तीसरी जन्नत में होऊंगा, यानी स्टैंडर्ड फ़र्क होगा। आपको तो अल्लाह ने जो देना है मुकाम वो तो किसी का नहीं, और आपने खुद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत का एक मुकाम अपने एक बंदे को देना है और वो वसीला है और वो सिर्फ एक को मिलना है, और मैं फ़ख्र से तो नहीं कहता लेकिन वो मुकाम मुझे मिलेगा। तो कहा अल्लाह के नबी आज इस बात से दुखी हो गया हूँ कि जन्नत में जब मुझे आपकी याद सताएगी, आपकी मोहब्बत आएगी, तो फिर मैं उस वक्त आपको कैसे देखूंगा, क्योंकि आप तो बड़े आला दर्जों में होंगे। सच बताएं, आज अपनी उम्र देखें, 25, 30, 40, 50, 60 साल गुजर गए, कितने आंसू बहाए, कितने गम झेले, कितने दुख उठाए हमने अपने जोम में, हमसे ज्यादा कोई दुखों में पड़ा हुआ ही नहीं, अल्लाह ना करे कभी एक आंसू मेरा आपका इस रास्ते में गिरा आज तक बगैर मुबालगे के। ये सोच मुझे और आपको आई कि मैं नबी सल्लम का दीदार कैसे करूंगी? अल्लाह के दीदार का ही सोच लें तो बड़ी बात है, नबी का तो नहीं सोचते। और मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरे जहन में आती है ये बात, आपसे भी शेयर कर रही हूँ, शायद आपके भी कभी जहन में ख्याल आए, ये तुम्हारा ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकाम एक मिलना है, वसीला नाम का मुकाम है, जो अज़ान की दुआ के आखिर में भी हम मांगते हैं कि बाबा सो मकाम अल्लज़ी व मकाम मकाम महमूद महमूद अनिल लजी वत्तलहू। अब आप देखिए कि नबी सल्लम को तो वो मिलना है, आपकी बीवियों का क्या होगा? जो मेरा क्वेश्चन दिन में आता है कि नबी सल्लम की बीवियों के साथ आपको किस तरह रखा जाएगा, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। लेकिन ये हमारा ईमान है कि जो आज अज़वाजे मुतहररात थी इस दुनिया में, वहां अल्लाह के नबी की बीवियां बनेंगी। लेकिन सहाबी को गम यह कि मैं आपको कैसे देखूंगा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे हम सारे यहां से इकट्ठे निकलें पाकिस्तान के लिए, 10 लोग निकलते हैं, एक के पास फर्स्ट क्लास टिकट है और बाकी सारे इकोनॉमी में है, तो वो इकोनॉमी वाले पीछे से आगे नहीं जाके बैठ सकते चाहे सीटें खाली भी हों, अगले को ही आना पड़ता है पीछे। तो वो ये सोच रहे थे, उस पे अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया है मेरे साथी गम न कर, अल मरउ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। और कुरान में आयते हैं, सूरत निसा में भी पढ़ेंगे, वमन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मल्लज़ीन अनअमल्लाहु मिनन नबीजीन वसिद्दीकीन। और उससे आगे तवील बात है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो फिर नबियों और सिद्दीकों और शहदा के साथ होगा। तो सहाबी कहते हैं हमें इससे ज्यादा खुशी कभी किसी बात पे नहीं हुई जो इस पे हुई कि हम जन्नत में जाकर भी अपने प्यारे नबी को देख सकेंगे। इतनी मोहब्बत करने वाले साथी, जहां आपका पसीना गिरता था वहां वो खून के कतरे गिराते थे, उन्होंने भी आपकी मोहब्बत में वो काम नहीं किया جو کہ آپ نے خود نہیں کیا، کیونکہ محبت بندھی ہوتی ہے، محبت اور نفرت کے اظہار میں ہم بندھے ہوئے ہیں. من چلے لوگ کہہ سکتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، سنا ہوا نا آپ نے جملہ، ایوری تھنگ از الاؤڈ ان وار، جنگ میں محبت میں. اسلام تو نہیں مانتا، ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیسے ہر بات اپنی مرضی کی کریں. دیکھیے، آپ کو بچے سے پیار ہے تو بچے سے پیار کا اور اظہار ہوگا، بڑے سے پیار ہوگا تو بچوں کی طرح اس کو جا کے گدگدائیں گے. ماں سے پیار اور بیوی سے پیار کا اظہار فرق ہے، باپ اور بھائی اور شوہر کے پیار میں فرق ہے. تو نبی کی محبت صحابہ نے کی اور محبت کے طریقے بھی سکھا دیے. یہ محبت ہی کہ کہا کھڑے رہنا تو کھڑے رہنا، یہ محبت ہی کہ چل پڑو تو چل پڑو. بنو قریظہ کا موقع تھا، ایک جنگ سے ٹوٹے ہوئے آئے، غزوہ احزاب میں ایک مہینے کا حصار تھا. آپ سورۃ احزاب کی تفسیر میں جا کے اس کا شروع میں اس کا پڑھ لیجئے، آپ کو پورا واقعہ مل جائے گا. اور میں دعوت دوں گی کہ اس ربیع الاول میں کم از کم ایک دفعہ شروع سے آخر سیرت پڑھ لے. کوئی گھر میں ہے، کوئی بیڈ ریسٹ پہ ہے، کوئی کہیں جاب پہ ہے، وقت بہت ہوتا ہے، کوئی ایک بک لے لیجیے اور شروع سے آخر پڑھ لیں کہ ذرا دیکھوں کہ نبی اور اس کے ساتھی کیسے تھے. ایک مہینے کی اعصاب شکن جنگ تھی، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلائے گئے، ایسے جانیں حلق پہ تھی، وَقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِر، قلیجے حلق میں آئے ہوئے تھے، اور مسلمان کھڑے، سرنگیں وہ خندقیں کھودی ہوئی ہیں، کھڑے یک سردیاں، ایسے ہوائیں پٹک پٹک کے پھینکتی تھی، نہیں کوئی ہلا. آج ہم مرضیاں کرتے، نہیں جی کھڑے ہو سکے، چلے گئے، ٹھنڈ لگی تھی، کیا کرتے پھر، ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، جنگ لگ گئی ہے، اب ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں آنا دشمن ہے، اور ہمارے سے کیا ہوتا ہے. واللہ ہی اگر صحابہ مرضیاں کرنے والے ہوتے تو یہ دین کا پودا نہ لگتا جو یہ فما واہنو و مستقانو کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اور اللہ اللہ نے وہ جنگ جتوائی، اسی جنگ میں یہود نے غداری کی، دھوکہ دیا، وعدہ شکنی کی. اللہ کے نبی وعدہ شکنی پسند نہیں کرتے تھے، کمٹمنٹ کر کے جو توڑتا تھا، اللہ کے نبی نے اسی بات پہ تو مکہ کی طرف چڑھائی کر دی تھی. یہ تو سارے سیرت کے سبق ہیں، ایک ایک بات زبانی رٹی ہوئی ہے، جنہوں نے سنی، جنہوں نے سنائی، لیکن بات سچ ہے. صحابہ کرام گھر گئے، اللہ کے نبی بھی گھر گئے ہیں، اور ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے تو اب جبرائیل آ گئے آپ کے پاس. کہا اللہ کے نبی، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو نہیں اتارے، کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا دوبارہ اللہ حکم دیتا ہے بنو قریظہ کے قبیلوں میں چلو، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی. اب یہ تاریخی باتیں نہ رکھے، بس ایک جنگ سے، ایک مہینے کے تھکے ہارے سفر سے گھر آئے ہیں. آپ سوچیں پاکستان سے آئے ہیں، ایک مہینہ باہر رہ کر 8-10 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ابھی گھر آ کے سامان نہیں کھولا، تو آپ کو کہا جا رہا ہے واپس چلیں پھر کسی لمبے سفر پہ. اللہ کے نبی نے باہر آ کر صرف ایک پیغام دیا، یہ جو مائک ہے نا، یہ اس دور میں نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی. جن کے کان دل حاضر ہوتے ہیں نا، ان کو مائک سے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک آواز، ایک سے میں نے آپ کو کہی، آپ نے ان کو کہہ دی، آپ نے ان کو کہہ دی، بات پیچھے چلی جاتی تھی، کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے نہ پڑھے، اور 8-10-12 میل کا سفر تھا. کوئی سوال نہیں، نو آبجیکشن ایٹ آل، کیا ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہیں، مروائیں گے، بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا، بیویاں گھر میں تھی، بچے پتہ نہیں بیمار تھے، راشن ہے کہ نہیں، ابھی گروسری آنی، اور ابھی اگلی جنگ میں لے کے جا رہے ہیں. فما وہنو و مستکانو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یہ محبت والے لوگ ہیں جنہوں نے، یہ اسلام کا ماضی ہے اور آج بھی مستقبل میں ایسے ہی مسلمان درکار ہے، اگر اس پوری دنیا کو آپ نے اسلام کی دولت دینی ہے. صحابہ چل پڑے، اللہ کا کرنا دیکھیے، چلتے چلتے ٹائم لگتا ہے، کوئی گھوڑے پہ ہوگا تو کوئی اونٹ پہ تو کوئی پیدل، اتنے میں عصر کا وقت آ گیا. کچھ نے کہا پڑھ لیتے ہیں، وقت آ گیا، پڑھ لی. دوسروں نے کہا نہیں، نبی نے کہا تھا کہ تم نے ان کے قلعوں میں جا کے پڑھنی، ہم تو نہیں پڑھیں گے. نماز کا وقت اپنی جگہ پر، نبی کا حکم اپنی جگہ. کہا اچھا بھی تمہاری مرضی. وہ کچھ وہاں پہنچ کے پڑھتے ہیں جب عصر ذرا لیٹ ہو رہی تھی، کچھ نے شروع میں پڑھ لی. اتنی اطاعت کرنے والے تھے اس جنگ میں، کیا وہ اس کو چھوڑ دیں؟ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایشو رکھا گیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں کہ ہم نے تو یہ کیا، یہ ٹھیک کیا، دوسروں نے آ کے اپنا عمل کیا. آج تو ہم دوسرے فرقے کی باتیں اچھالتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں، نہیں وہ اپنا بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ اسیر ادھر پڑھنا، میں نے شروع میں پڑھ لی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. کہا کوئی تم نے ٹھیک کیا. دوسرا آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے تو آپ کا حکم اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے کہا نہیں نماز لیٹ ہو جائے، لیکن آپ نے کہا ہے وہاں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھوں گا. میں نے یہ کیا ہے، کیا میں نے غلط کیا؟ کہا تو نے بھی ٹھیک کیا. ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना एक दूसरे पे कीचड़ उछला, ना कहा डोंट स्टॉप इट और इस मैसेज को आगे ही करते रहो, रुके ना, लोगों को इनका चेहरा दिखा दो। मुसलमान उसके टूटे हुए नहीं थे। तो सहाबा की मोहब्बत अमल वाली थी। उस नबी को कह लीजिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते देखा था जिन साथियों ने। अबू बकर थे, जैद थे, खदीजा थी, उमर थे। ये शुरू के जो मक्की दौर के साथी थे ना, यही असल में इस्लाम की खेती का बीज है वल्लाही। उसके बाद तो कितनी नस्लें आईं और गईं, लेकिन वो ईमान जो उनके दिलों में नबी सल्लम की तालीमात और कुरान की आयतों की रोशनी में पड़ गया था, उसके बाद वो नहीं हटे। वमस्तकानू, उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं हिलेंगे। आप जरा इमेजिन करें इस खूबसूरत गिरोह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी, कितने मारके हुए। ये जो आयतें पढ़ाएंगे आपको उसमें देख लीजिए कि यही बात है ना कि दुनिया भी देते हैं आखिरत भी देते हैं। 13 साल मक्का में, खोल दीजिए इसको, 13 साल मक्का में जो मुश्किलात आई, कोई माई का लाल वो मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दिल में इस बात का यकीन ना हो कि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात माननी है। बिलाल की आहें तो आपने भी सुनी होंगी, आहद आहद की पुकार थी और कोयलों पर लिटाए जाते थे। और उमैया जो उनका मालिक था उनको मारता, मार मार के खुद थक जाता, कहता बिलाल तुझे दर्द नहीं होती, मैं तुझे मारते मारते थक जाता हूं। का दर्द होती होगी, मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में होता हूं। अहद कहते थे, क्यों कहते थे? इनको अहद के लफ्ज से गुस्सा आता है ना, तो मैं अहद ही बोलूंगा। ये कैसे होता है, दर्द नहीं होती थी। हबाब बिन अरत, और एक सहाबी जब मुसलमान हुए और आपस में जब मस्जिद नबी में काम बाम से फारिग होके बैठ जाते थे, कभी एक नमाज से दूसरी के इंतजार में बैठे होते थे, तो कहते थे आओ बातें करते हैं। वो भी करते थे, करनी भी चाहिए। एक सहाबी को कहते हैं सुनाओ भाई तुम कैसे मुसलमान हुए, हालात सुनाओ ना। जैसे कोई हमें कहते हैं आप यहां कैसे आ गए, आपने कहां से पढ़ा, क्या शादी हुई, कहां हुई। हर बंदे को जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत तजस्सुस होता है। तो किसी ने एक सहाबी से पूछ लिया कि सुनाओ कि तुम कैसे मुसलमान हुए। कहा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कमीज उठा देता हूं। उसने अपनी कमीज का पीछे से कपड़ा उठाया, सहाबा की चीखें निकल गई। जैसे अंडे रखने वाली वो जगह नहीं होती जिसमें अंडों के कहते, इस तरह उनकी स्किन में घड़े पड़े हुए थे। क्यों? कहा कि मुझे पत्थरों पे लिटाते थे, गर्म पत्थर मेरे जिस्म में जाते थे, तो ये मुझे इस्लाम के तोहफे मिले। एक सहाबी के जख्मों में उंगलियां डाल डालकर बच्चे खेला करते थे। इतनी तकलीफें आई, जुलजिलू वमस्तकान वमा। आप देखिए हम तो छोटी सी बात पे नब्जें टटोलते हैं। आज मुसलमान देखिए नातें पढ़ते हम, अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। हम दुरूद पढ़ते, अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने की तौफीक दे। मेलाद मनाते, नबी के नाम पे जान देने की बातें करते, आपके लिए वो बड़ी बड़ी बातें करते, आपके चेहरे की बातें करते, शायद ही 5 वक्त मस्जिद में नमाज जाके पढ़ते हो, शायद चेहरे पे दाढ़ी हो। किसी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मिलाद और नबी का जुलूस निकला हुआ था और 5-5, 10-10 रुपए की नकली दाढ़ियां लगा के लड़के आए हुए थे वहां। क्या ये मजाक नहीं उस दाढ़ी का जो अल्लाह के नबी ने रखी? टखनों से ऊंची शलवार वाला आज मेरे आपके दरवाजे पे आ जाए तो कोई कहेगा मौलवी आ गया या मांगने वाला आ गया। आज उम्मत कहां है? याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में और मदीना में जिन साथियों के साथ जिंदगी गुजारी थी वो असल खूबसूरत इनाम थे अल्लाह का। तभी तो दीन गालिब हुआ, तभी तो दीन हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लम अपनी जिंदगी की 63 बहारें देख चुके थे, दिलों में बसते थे अल्लाह के नबी। सहाबा किराम इशारे के मुंतजर होते थे, दूर से अल्लाह के नबी को कोई देखता तो उस रोब महसूस करता, बात करने की जरूरत ना करता। और जब कोई आपके करीब हो जाता तो आपसे मोहब्बत करने लगता। ये एक एक बात लिखी हुई है किताबों में। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिशन पे निकले जो मेरा आपका भी मिशन है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फिर अपनी जिंदगी का ना आराम देखा और ना फायदा देखा, ना नुकसान देखा। बदर की लड़ाई में जाने लगे हैं और अपनी जिगर की टुकड़ी, अपनी बेटी बीमार है, और बीमारी भी कैसी कि जो समझ आ रही थी कि अब ये चंद दिन की मेहमान है। कहते हैं उस्मान को कि उस्मान आप अपनी बीवी की टेक केयर करें, आपको अल्लाह उतना ही अजर देगा, हम चलते हैं। सच बताएं, दिल पे हाथ रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अगर आज का कोई बाप हो और बेटी की आजमाइश, बेटी कह लीजिए कि हॉस्पिटलाइज्ड है, वो जाएगा अल्लाह के काम पे। और मैं कहती हूँ वो जंगों में इतने बेसोचे समझे चले जाते थे, हम तो नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम तो पढ़ने पढ़ाने नहीं जाते, हमारे साथ तो इतने मसले हैं। हम कहते नहीं ये कैसे दीन तबलीग करें हम, लो हमारे तो बच्चे मर जाएंगे अगर हमने लोगों को दीन की बात कहने के लिए कुछ करना शुरू कर दिया, चले गए। और उधर से बदर की खुशियां मनाते हुए आ रहे हैं मुसलमान, और देखा तो हजरत उस्मान अपनी बीवी जो नबी की बेटी थी उनको दफन करके आ रहे हैं। खुशी के साथ गम मिला नबी को, इधर एक बेटी का गम और तबूक के सफर की खुशी के वापसी पर दूसरी बेटी जो उस्मानी की बीवी थी उनको भी दफना रहे थे। बेटियां मर रही हैं और अल्लाह के नबी चल रहे हैं एक रास्ते में, क्योंकि वह मस्तकान हूं। चलते गए चलते गए, अल्लाह के नबी किसी काम में मसरूफ है और बेटी मैसेज भेजती है कि अब्बा जान आइएगा, बच्चा बीमार है। नवासा कच्चा बेटा, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे फारिग होता हूँ, जो भी कहा होगा ये तो अब हम अपनी तौर पे अपनी जुबान में समझ रहे हैं ना, लफाजी की जरूरत ही कोई नहीं है, जज्बों को बस समझिए। थोड़ी देर गुजरी फिर पैगाम आया कि बेटी बुला रही है, बच्चा बहुत ही बीमार है। अपना काम पूरा करके जब वापस आए तो बच्चा जा चुका था। नवासा दुनिया से जा रहा है और आपको अल्लाह के कामों की फिक्र पड़ी हुई है। वमा खाना कौलुहुम, ये होते हैं वो लोग वल्लाही जो खुद पे रहम नहीं खाते, और अल्लाह की कसम ये लोग हैं जिनके लिए दुनिया भी जन्नत है। लोग इनके ऊपर तरस खाता है, अल्लाह आसमानों से सलाम भेजता है ऐसे लोगों को। हर मौके पे करके दिखाया अल्लाह के नबी ने, खुशी गम साथ साथ अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए सिर्फ 10 साल मदीना के, मक्की दौर को हटा भी दू ना नजरों से, उधर तो जुल्म ही है, सच जो बात है, वहां तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। वहां तो कभी पांव में ताइफ के मैदान में पत्थरों पे खून बह रहा है जिस पांव से खून निकल रहा है, या कभी कब जूते चिपक रहे हैं। लेकिन मदीना के सिर्फ 10 साल नबी की जिंदगी देखे, और आपकी उम्र मुबारक 50 से ऊपर, 53 ईयर्स के थे आप जब अपनी हिजरत की। एक उम्र होती है 53 ईयर्स, कोई जवानी नहीं है। और आप उस वक्त पैदल मक्का से मदीना गए, आज भी अगर आप जाएं फ्लाइंग कोचेस पे भी तो थकन हो जाती है ना, क्या कैफियत होती होगी जरा सोचिए। और अबू बकर जो उनके साथ थे, और उसके बाद क्या हुआ, हर दिन चैलेंज, हर दिन चैलेंज। मैंने खुलासे के तौर पे मक्की दौर और मदनी दौर करवाया हुआ है, एक का नाम दुर्रे यतीम है और एक का नाम क्या है जिनको याद है बोले जी, नहीं मक्की और मदनी एक साल रबी अव्वल में दो लेक्चर रखे थे, तो इसमें एक में मक्की दौर है दुर्रे यतीम और दूसरे का नाम भी कुछ इसी तरह का है, वेबसाइट पे मौजूद है, ऐप में भी वो सीरीज मौजूद है। सिर्फ 1 घंटे 1.5 में पूरा मक्की दौर स्टेप बाय स्टेप, और दूसरे में मदनी दौर है, वो आप सुनना चाहे सुन लें। लेकिन सारी बात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अमल वाली जिंदगी थी, रातें अल्लाह के सामने रो रो के गुजरती थी। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला, जब से वो आयत उतरी है, मक्की दौर के शुरू में उतर गई थी, रातों को खड़े होते थे, पांव सूज जाते थे और आप जागते रहते थे। आपकी बेगम में से किसी बीवी ने कह दिया कि अल्लाह के नबी आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले गुना माफ किए हुए, सूरत अहज़ाब की शुरू की आयतों में, मा गफर अल्लाह मिन ज़म्बिक मा तकद्दम व मा तअख्खर, अगले पिछले गुना माफ है, आप क्यों ये करते हैं इतना काम। क्या फला अकून अब्दन शकूरा, का इसलिए कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं तो उसका शुक्र अदा करने के लिए रातों को जागता हूं। रातें ऐसी थी कि सीने में से हंडिया की आवाजें आती थी, और दिन कैसे थे, या अय्युहल मुद्दसर कुम फअंजिर, ये हैं दो मेरे नबी के मुकाम। या कुमिल लैल, रात को रब के सामने खड़े होते थे और राहिब बन के रोते थे, और दिन में लोगों के बीच में गर्दिश करते थे। फानजिर वानजिर अशीरत कल अक्रबीन, सूरत शोरा की आयतें नाजिल हुई कि जाइए अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, डराने से मुराद था कि वॉन कीजिए, इनकी खैर ख्वाही करें। एक एक कबीले बस्ती घर में गए, खाने की दावत करके खानदान को बुलाया, अबू जहल को, अबू लहब को बुलाया, सबको कि लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ये नबी था हमारा, सारी जिंदगी का मिशन, एक सुन्नत जो आपने कभी नहीं छोड़ी वो इंतजार थी। لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اچھی بات کا حکم دینا، اللہ سے جوڑنا۔ ہم کہتے ہیں رمضان آئے گا تو کریں گے یہ کام، عمرے پہ جائیں گے تو رب کو یاد کریں گے، حج پہ جائیں گے تو رب یاد آئے گا، کعبے کے طوافوں کے دوران رب کو یاد کریں گے، باقی ادھر آ کے یہ تو شادی ہے، یہ تو منگنی ہے، یہ تو پہلا پھیرا ہے، اور ہماری تو مجبوریوں کے کوئی مرحلے ہی نہیں ختم ہوتے۔ جس رب سے خوشیاں مانگتے ہیں، اللہ کی قسم، غلط نہ کہوں، دل نہیں کرتا کڑوی بات کرنے کو، لیکن یہ اتنا بڑا سچ ہے آج امت کا، پھر بولتی ہوں، شاید آدھا جملہ پہلا نہ سنا آپ نے۔ آج جس رب سے ہم خوشیاں مانگتے ہیں نا، اپنی خوشیوں میں اس کو ناراض کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، گویا کہ کہتے ہیں دے پھر اور خوشی، تجھے کر کے دکھاتے ہیں نافرمانی۔ عام دنوں میں تو اچھے بھلے نمازی ڈھکے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، جس دن کو خوشی کا دن آتا ہے ذرا دیکھا کرے سر سے پاؤں تک لوگ ہمیں گناہ کی تصویر بنے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کرے، مجبوری، خوشی تو بار بار ہی آتی ہے۔ یعنی اب خوشی میں نہیں اللہ کو ناراض کریں گے تو اور کب کریں گے؟ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی، پیار کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے جب واپس آئے، جو آپ کی زندگی کی ایک آخری جنگ تھی، پھر اس کے بعد آپ کی صحت تھوڑی سی گرنے لگی۔ خیبر کی جنگ کے ارد گرد کے دور میں ایک یہودی عورت نے آپ کو بہانے سے بلایا کھانے کی دعوت پہ، اور زہر دے دیا۔ اللہ نے نبوت کے مقام کو ثابت کروا دیا، پہلے سے ہی فرشتے نے بتا دیا، ابھی لقمہ منہ میں گیا، فرشتے نے کہا اس کو اگل دیں، اس میں زہر ہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت بشیر، انہوں نے کھا لیا، ان کی تو موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اگل دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ زہر ہے، یہودی عورت آ گئی۔ اب امیجن کریں، اللہ نہ کرے کوئی کھانے پہ بلائے اور بعد میں پتہ لگ دے زہر دیا، کیا کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ؟ ہم جیسے عاشقان محب رسول اور پتہ نہیں کیا ہوتے، کہتے اس کو یوں مارو کہ ساری دنیا یاد رکھے۔ کہا نہیں، ادھر آ، دعوت پہ بلایا نا، مہمان ہوں، تو زہر کیوں ڈالا؟ دیکھیے کتنی ہوشیار عورت ہے، کہنے لگی اس لیے ڈالا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو دنیا کو ایک جھوٹے نبی سے نجات مل جائے گی۔ بات اس کی ایسی تھی، کہا جا اللہ میں نے تجھے معاف کیا، ہے اتنا وصف میرا آپ کا، ہم تو اپنے خون کے رشتوں کو نہیں معاف کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر اگل تو دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ ہر سال وہ زہر مجھے تکلیف دیتا تھا۔ آپ کہتے ہیں بعض زہر ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن کھائے ہوں سال کے سال اس کا اثر اٹھتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو کوئی درد ایک دم اٹھ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ، جو ایک چھوٹے سے ینگ بچے تھے، ان کی مائیت میں ایک لشکر بھیجا جو مدینہ سے جا رہا تھا کسی بھی جگہ، کسی مشک میں ہم پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل ہو گئی، جو اللہ نے کام آپ کو دیا تھا نا، لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ مکہ سے لے کر تبوک تک اسلام آ گیا۔ امیجن تو کریں، آپ ذرا آج گھر جا کے اپنے بچوں سے کہ آپ کو کمپیوٹر سے نقشہ کھول دیں، ذرا سب ماؤس کو گھماتے گھماتے مکہ سے مدینہ، شام، ایران، جو بھی تبوک کی حدیں تھیں نا، وہاں تک اسلام آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مشن دیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب کچھ اثرات شروع ہو گئے۔ آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی فیلنگز آ رہی تھی کہ جس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انیوژل وقت ہے۔ میں چند پوائنٹ نکھاتی ہوں آپ کو، جس کو فائدہ ہو لکھ لیں۔ یعنی جس طرح آپ اپنے طور پہ نہیں کہتے، امی جی کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، ایسے ہوتے نا کبھی، کچھ بڑے ہیں، بیمار ہیں، یعنی جیسے وقت سے پہلے سوجھنے لگتا ہے۔ تو کچھ علامتیں تھیں، مثلا آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، عام طور پہ آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، آخری 10 راتیں، لیکن سن 10 ہجری میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ ایک انیوژل چیز صحابہ کو دیکھی۔ دوسری انیوژل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ کے ساتھ آ کر رمضان میں پورا قرآن جو بھی نازل ہوا تھا اس کا دور کرتے تھے، جس کو آج ہم دورہ قرآن کہتے ہیں، اس سال 2 دفعہ کروایا۔ یہ انیوژل بات تھی۔ پھر حجت الوداع ہوا۔ اگر آپ مہینوں کو دیکھیں تو رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ رمضان کے بعد جب آپ کا حج، وہ آخری حج تھا آپ کی زندگی کا، ایک پہلا اور آخری حج، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ ہم ہوتے تو ہر سال حج پہ جاتے، اور عمرے پہ جاتے تو 6-6 عمرے کر کے آتے ایک ہی سفر میں۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں 2-3 عمرے کیے اور ایک حج کیا۔ اس حج کے موقع پہ آپ نے کہا، لوگوں شاید اس سال کے بعد میں تم سے کبھی نہ مل سکوں اس مقام پہ۔ یہ بات بھی صحابہ کو لگی۔ फिर आप जमरा अकबा पे खड़े हुए तो आपने कहा, लोगो मुझसे हज के तरीके सीख लो, गालिबन इसके बाद मैं हज नहीं कर सकूंगा। ये भी एक अलामत थी। फिर उसके बाद जब हज के बाद के जो दिन है ना, जिसको हम ईद के 2-3 दिन कहते हैं, अय्याम तशरीक कहते हैं वैसे उसको, उन्हीं के दौरान आप पर सूरत नाजिल हो गई, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। जब आ गई मदद अल्लाह की और फतह, और आप देखते हैं कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, बस आप उसकी हम्द के साथ तस्बीह करें और इस्तग़फार करें, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ये आए सूरत उतरी तो सहाबा तो बड़े खुश हुए, क्योंकि इसमें फतह की बातें, ये ऐसे ही कि पहले 10 लोग सुनने आते थे, अब 100 आने लगे तो सुनाने वाला खुश होगा ना। लेकिन जब ये सूरत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए। कोई किसी ने डांटा, अबू बकर आपकी भी बात ना उल्टी है, खुशी के मौके पे अब उदास और उदासी के मौके पे खुश, ये तो अब मैं अपनी टोन में कह रही हूं ना। लेकिन अबू बकर की फरासत बहुत थी, कहने लोगों ने कहा, भले इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह नबी को खुशी दे रहा है ना कि आपका आपको गलबा मिल रहा है। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा था आपको याद है? कहा, हर रूज के बाद तो जवाल है। ये सूरत नसर असल में नबी सल्लम की रुखसती की खबर है। जब काम जो खत्म हो गया तब तो जाना ही है ना। लोग कहते हैं हज खत्म हो, तो जब हज खत्म होता है तो क्या करते हैं फिर हम?
वापसी।
कोर्स खत्म हुआ तो वापसियां, कई तो वापसी पहले ही ले लेते हैं, कुछ तो कभी जाते ही नहीं है, है ना। जब काम जो पूरा हो गया, जिस काम आए हैं कर लें, अभी आज ये प्रोग्राम है शुरू हुआ, अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो अबू बकर रो पड़े कि अल्लाह के नबी अब जाने वाले हैं, गोया कि अल्लाह के नबी की मौत की इत्तला थी। फिर एक और खबर हुई, सफर का महीना जब आया 11 हिजरी का, तो आप ओहद के मैदान में गए, और जो ओहद के शोहदा थे, जिनका भी शुरू में आपको तस्करा सुनाया, उनके लिए जाकर वहां ऐसे दुआ की कि जो मुहद्दिसीन और जो सीरा लिखने वाले अहले सीर वो कहते हैं, ऐसे लग रहा था कि आप जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने सफर पे जाना हो या हज पे जाना हो या कहीं से मूव होना हो तो फिर सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, अच्छा कहा सुना माफ करना। मैं कहती हूँ इसको जरा खोल के कहा करें, आप कहा करें गीते माफ करना, चुगलियां माफ करना, जो मैंने आप पे इल्जाम लगाए वो माफ करना। और जब कोई मैं कहती ना कहा सुना माफ करना, हम भी कहते हैं हाँ कर दिया, बाद में फिर वही बातें दिल में होती हैं, बगैर शऊर के करते हैं ना इसलिए। लेकिन बहरहाल नबी सल्लम ने जाके वो बातें की, उसके बाद आप मिंबर सजाते हैं, मिंबर यानी जैसे आज हम माइक पे बात करें, तो आपने सहाबा से कहा कि लोगों मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूं और तुम पर गवाह हूं, बा खुदा इस वक्त मैं अपना हौस यानी हौजे कौसर देख रहा हूं, मुझे जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां दी गई, बा खुदा मुझे ये खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, यानी उम्मत मुस्लिमा में से शिर्क का मुझे खतरा नहीं, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम दुनिया तलब करने में आपस में मुकाबले करोगे। सच है कि झूठ? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सबको याद था इसका तर्जुमा था, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। ये बातें भी लोगों को दिखा रही हैं कि आपके बाद की बातें क्यों हैं। फिर एक और अलामत लोगों ने देखी कि नबी सल्लम आधी रात को उठे तो बकी कब्रिस्तान में चले गए और वहां उनके लिए दुआएं की और कहा कि कब्र वालों तुम पर सलाम, लोग जिस हाल में हैं इसके मुकाबले तुम्हें वो हाल मुबारक हो जिसमें तुम हो, यानी कब्र वालों को खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम ज्यादा अच्छी जगह पे हो, फितने तारीक रात के बादल तारीक रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे एक आ रहे हैं, यानी अब आने वाले दौर में दुनिया में फितने ही होंगे और हर आने वाला दौर पहले से बुरा होगा। ये भी एक खबर थी। खैर ये सब हो रहा था तो उसके बाद सफर का आखिरी दिन, यानी अब यहां से आप गिनेंगे मेरे साथ खुद भी, हम बिल्कुल अपने आखिरी हिस्से पे लेक्चर के, 29 सफर का महीना है 11 हिजरी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज का आगाज होता है, यानी रबी अव्वल के 12 और उससे पीछे का एक दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के लिए गए, यानी कोई फौत हुआ तो उसके जनाजे के लिए वकी में तशरीफ ले गए। वापिस आ रहे थे ना तो आपके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हुआ और बुखार हो गया। इतना बुखार था आपको कि सर पे बंधी हुई जो पट्टी थी ना वो भी गर्म होकर तप रही थी। ये था आपके मरजुल मौत का आगाज। आपने इसी हालत मर्ज में 11 दिन तक जमात से नमाजें पढ़ाई। आपकी जो बीमारी जिसमें आपका इंतकाल हुआ, कुल मुद्दत उसकी 13 दिन थे और 14वें दिन आपका विसाल हुआ। इसी तकलीफ में थे कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू होता है 7 दिन पहले। तबीयत रोज बरोज बोझल थी और अपनी अजवाजे मुताहरात जिनके पास आपने बारी लगाई हुई थी, एक दिन एक के पास तो दूसरी के पास, जिधर आप जाते तो कहते कल मैं किधर होऊंगा। हर एक से जब यही बात कहते तो आपकी अजवाज समझ गई कि आप हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बारी का इंतजार करें। सब ने आपस में बात की, कहने लगी क्यों ना हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दें कि अब आप बीमार जो हैं तो आप हजरत आयशा के पास ही रह लें। असल में खबर थी ना पीछे से, क्योंकि नबी जहाँ फौत होते हैं उनको वहीं दफन किया जाता है। और आयशा से मोहब्बत भी बड़ी थी और बहुत सारी हिकमतें थी। अभी पिछले महीने 3-4 वीक पहले ही सीरत आयशा पे एक पूरी बात की है, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। बहरहाल अजवाज ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हम अपनी खुशी से आपको इजाज़त देते हैं कि आप हज़रत आयशा के हुजरे में चले जाएँ। आपने कहा ठीक है। हज़रत फजल बिन अब्बास यानी जो आपके चचा के बेटे थे और अली बिन अबी तालिब जो दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी थे, दोनों का सहारा लिया चलकर हजरत आयशा के हुजरे में गए। सर पे पट्टी बंधी हुई थी और पांव जमीन पर घिसट रहे थे। आप कह लीजिए कि ये था आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता और फिर आप उसके बाद उसी हुजरे में 7 दिन गुजारते हैं। हजरत आयशा उम्र की बहुत छोटी थी लेकिन समझदार बहुत थी। नबी सल्लम से याद की हुई दुआएं, कुरान की आयतें आप पे पढ़ती, दम करती, बरकत की उम्मीद में आपके जिस्म पर हाथ फेरती थी। इसी में 5 दिन रह गए, 2 दिन और गुजर गए। वफात से 5 दिन पहले क्या थे, बुध का दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखार में इतनी शिद्दत आ गई, तकलीफ बढ़ी तो गशी शुरू हो गई। आपने फरमाया मेरे ऊपर मुख्तलिफ कुओं के 7 मशकीज़े पानी बहाओ, यानी पानी डालो मेरे ऊपर ठंडा, ताकि मैं लोगों को जाकर कुछ सिखा सकूँ। जरा सा रुकिएगा, बीमार हैं, आदत थी नबी सल्लम रोज लोगों का को दर्स देते, आप कह लें जो वही उतरती थी ना उसको सहाबा के साथ जाके शेयर करते थे, कुछ याद कर लेते थे, कुछ उसकी बातों को समझ जाते थे। कहा कि मुझे शावर दो, पानी डालो, ताकि मैं जाके लोगों को वसीयत करवाऊं। और रवायतों में आता है कि आपको एक बर्तन में बिठाया गया और आपके ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप कहने लगे बस बस बस, यानी अब और नहीं डालो। इतना पानी डालने से जरा सा बुखार कम हुआ। मस्जिद में गए, सर पे पट्टी बंधी हुई है, जरा इमेजिन तो कीजिए, और मिंबर पर बैठे और खुतबा इरशाद फरमाया। सब सहाबे कराम मोहब्बत में आपके इर्द गिर्द आ गए क्योंकि वो आपको मिस कर रहे थे। कई दिन से थे निकाहत की वजह से आप उठ ही नहीं पा रहे थे। जब आपके इर्द गिर्द सहाबा बैठ गए आपके, तो आपने फिर आपको वाज दिया जिसमें खबर क्या थी कि यहूद और नसारा जैसे ना बनना, कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया था, यानी मेरी कब्र पे उर्स मेले और वो मजावर बन के ना बैठना। इसी तरह अल्फाज के फर्क से काफी चीजें, आपने कहा मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। साहबा के लिए ये बड़ा रिक्कत तमीज था। अब जरा अपने ऊपर लें, हमारे खानदान का कोई अपना प्यारा हमें दिख रहा है कि वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, और जब बातें भी ऐसी करे और मोहब्बत का हाल क्या होगा। फिर आपने एक और ऐसा काम किया कि जो शायद ही कोई करे। आपने सहाबा में अनाउंस किया कि आप में से जो कोई मुझसे कसास लेना चाहे, यानी खुद को कसास के लिए पेश किया। कहने लगे मैंने कभी किसी को मारा, किसी की पीठ पे कोई कोड़ा लग गया तो मेरी पीठ हाजिर है, मैंने किसी की बेइज्जती की तो कर ले, यानी जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम मेरे से कर लो। ये कौन करता है जिसको आखिरत की जवाबदेही का फिक्र होता है? वो सोच रहा होता है कि मैंने दुनिया में देना है बदला तो आसान है, कल वहां देना पड़ा तो सारी नेकियां चली जानी है। हदीस में आता है कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो बहुत नमाज रोजे और इबादात के साथ आएगा, बट लोगों की बुराइयां की, उनको तकलीफें दी, लोग आते जाएंगे उसकी नेकियां ले जाएंगे, आखिर उसके लोगों के गुनाह उस पर डलने लगेंगे और वो जो जन्नत में जाने का दावेदार था वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह हमें ऐसे नेकों में ना करें कि हम लोगों के दिल दुखाएं और लोगों को बुरी बातें कहें। खैर जो भी बात हुई उसके बाद आप मेंबर से उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई। फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और दोबारा जाके फिर कुछ बातों की नसीहत की। ऐसे लगता था कि वो कहते ना कि शम्मा बुझने से पहले फड़फड़ाती है। जो बता सकता हूँ बता लूँ, जो कह सकता हूँ कह लूँ। कहा, लोगों मैंने किसी का कुछ लेना देना तो नहीं है। एक शख्स ने कहा कि 3 दिरहम आपने मेरे देने, कभी लिए होंगे उधार? आपने फजल बिन उबाद से कहा कि इनको अदा कर दो, दे दिया। फिर एक काम आपने क्या किया कि अंसार, अब जरा से गौर से सुनिएगा, मुहाजिर कौन है? मैं आप सिर्फ सिस्टर्स को सामने रखते हुए समझाने के लिए अपनी टोन में कहती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। मुराद नबी की तो वो नहीं थी, लेकिन हमें बात उससे समझ आएगी। मुहाजरीन नबी का मैका, तो अंसार ससुराल थे। देखिए, सहाबा ने जो कुर्बानियां दे दी, जो लोग किसी जगह दावत के आगाज में मट्टी बन जाते हैं ना उस काम की, वो अपने हो जाते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, जो नाम जुबानों पे आते हैं, ये मक्की थे। मदीना में जाकर लोगों को अपना बनाना था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा क्या था? बड़ी अहम बात है ये कि कहीं मेरे बात ये जो महाजरीन जिन्होंने इतनी नेकियां की हुई हैं, इनको जोम ही ना कोई हो जाए कि हम तो इतनी कुर्बानियां करके आए और अंसार को हरासे से ना हटा दें। दूसरी लफ्ज में कह लें कि सीनियर्स जूनियर्स को आगे से किक आउट कर दें। चलो भाई, जो तुम कौन हो, कुर्बानियां तो हमने दी हैं, तुम लोगों को तो पका पकाया सब मिल गया। सहाबा को नसीहत की कि देखो बच्चों का इंतजाम है, उस रूम में स्क्रीन भी है और वो बेबी सिटर्स भी हैं, आप बच्चे को अंदर भेज दीजिए बेशक। अब क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अंसार मेरा दिल और मेरे दिल और जान का टुकड़ा है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मगर इनके हकूक बाकी हैं। फिर आपने लोगों से कहा कि इनसे प्यार करना, यानी साथ मिल के प्यार से मोहब्बत से रहने की बात की। आपने फरमाया ये अंसार हैं कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, वक्त के साथ साथ अंसार जैसे लोग ऐसे रह जाएंगे जैसे आटे में नमक होता है, यानी लोग थोड़े होंगे। तो आपने कहा कि उनका ख्याल रखना। फिर एक बात जो आपने कही वो भी बड़ी दिलसोज थी। आपने कहा कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की चमक तमक और जेबो जीनत में रहे, या फिर जो अल्लाह के पास उसके लिए उसको इख्तियार कर ले। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ये बात सुनकर अबू बकर फिर रोने लगे। लोगों ने कहा कि आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान है, आप क्यों रो रहे हो? बल्कि हदीस के लफ्ज पता क्या, लोग कहते इस बुढ़े को देखो, अल्लाह के नबी पता नहीं एक बंदे की बात कर रहे हैं और अबू बकर पता नहीं क्यों रोने लग गए। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मतलब कहा नहीं, जो बात समझ आ गई कि चंद दिन बाद पता चल गया लोगों को भी, जो अबू बकर को उसी वक्त लग गया था कि वो जिस बंदे की बात की थी वो तो खुद अल्लाह के नबी थे और अबू बकर सिद्दीक वक्त से पहले समझ जाते थे। फिर साहबा ने कहा वाकई अबू बकर साहिब इल्म थे। आपने फरमाया दोस्ती में और माल में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान अबू बकर के हैं, अगर मैं अपने रब के अलावा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा इनके साथ इस्लाम का खुवत का रिश्ता है। मेरे बाद मस्जिद नबी में आने ले सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ना, और वह अबू बकर का था। अब यहां से इशारे मिल रहे हैं कि आपके बाद खिलाफत का हक अबू बकर सिद्दीक को होगा। छीनी नहीं थी उन्होंने, अल्लाह अपनी जिंदगी में अपने इमामत के मसल्ले पे खड़ा करके गए थे। चौथे दिन पे आते हैं, 4 दिन रह गए आपके दुनिया में। जुमेरात का दिन था, इंतहाई तकलीफ थी। आपने कहा कि मेरे पास कागज कलम लाओ, मैं एक तहरीर लिखाऊंगा जिसके बाद तुम लोग कभी गुमराह नहीं होगे। जिन लोगों के सामने आपने ये बात की ना, उसमें हजरत उमर भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस वक्त तकलीफ की कैफियत है, पता नहीं कोई गलत बात ना लिख दे। होता ना बीमार बंदा कुछ भी कह दे, तो मेरा तो मशवरा कि ना लिखो, हमारे पास कुरान मौजूद है और वो हमारे लिए काफी है। इस पे सहाबा किराम में इख्तलाफ राय शुरू हो गया। कुछ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी जो कह रहे हैं लिख लो, वो लिख लेते हैं। कुछ ने कहा नहीं, पता नहीं तकलीफ में कोई गलत बात ना निकले। इतनी आवाजें ऊपर उठी कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि उठ के चले जाओ इधर से, वो बात नहीं लिखा सके। फिर उसके बाद आपने 3 बातों की वसीयत की। नंबर 1 क्या था कि यहूद और नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना, और आज तक निकले हुए, शुक्र अल्लाह का, वरना तो हज उमरे का भी पता नहीं आज क्या हाल हो चुका होता। दूसरा ये आपने कहा कि जो वफद आते हैं ना बाहर से गेस्ट्स, उनकी इज्जत किया करना। जो लोग इस्लाम में इंटरेस्ट लेते हैं तुम उनकी वैसे ही इज्जत करो जैसे मैं करता हूं। और अभी कहते हैं कि तीसरी बात आपने क्या बताई थी वो मुझे भूल गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने ये कहा था कि किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। और एक और हदीस से मिलता है, तरक तुफी कुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक तुम बिहिमा, दो चीज़ें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत, तुम इनको पकड़ लो कभी नहीं भटकोगे। और आज ये बात सच है। फिर इसके बाद आपने लश्कर उसामा को रवाना करने की वसीयत की, और एक वसीयत जो आपने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में की, वस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, लोगो नमाज का ख्याल रखना और अपने लौंडी गुलामों का, अपनी बीवियों का ख्याल रखना। अपनी वफात से 4 दिन पहले तक यानी जुमेरात के दिन तक सारी नमाजें मस्जिद में जाकर खुद पढ़ाई। उस रोज भी मगरिब की नमाज आपने खुद पढ़ाई और उसमें सूरत वल मुरसलाति उर्फा पढ़ाई, 29वें पारे की आखिरी सूरत है। ईशा के वक्त इतना बीमारी का गलबा भड़ा कि मस्जिद में जाने की ताकत ना रही। हजरत आयशा कहती है कि आप मुझसे पूछने लगे कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, तो कहा नहीं अल्लाह के नबी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा अच्छा जाओ मेरे ऊपर, मेरे लिए बर्तन रखो, फिर मेरे ऊपर पानी डालो, गुसल करो, यानी बुखार का इलाज गुसल से करते थे। और आज देखिए साइंस कहती है कि बीमार बुखार वाले को नहलाओ। हमारे दौर में जब हम छोटे थे ज़रा तो हमें नहलाते नहीं थे, जी बुखार चढ़ा हुआ है, हालांकि हदीस में है कि बुखार को पानी से तोड़ो। कहती हैं कि आपके ऊपर पानी डाला गया, गुसल किया, आपने उठना चाहा, लेकिन फिर गशी तारी हो गई, फिर ज़रा सी होश आई तो कहते हैं लोगों ने नमाज पढ़ ली है। कहा नहीं वो बैठे हैं बाहर, साहबा बैठे हुए थे आपके इंतज़ार में। 2-3 बार इसी तरह बेहोश होते रहे और गुसल करते रहे, आखिर जब ना उठ सके तो कहा जाओ अबू बकर सिद्दीक को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। उसके बाद फिर अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अबू बकर ने आपकी ज़िंदगी में 13 नमाजें पढ़ाई, यानी उसके बाद अबू बकर बन गए। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं कहती थी कि अल्लाह के नबी अबू बकर की जगह किसी और का नाम दे दें इमामत के लिए, लोग अबू बकर से हसद ही ना करने लगे, यानी बदशगुनी ना करें या बदगुमान हो कि ये हर चीज़ में आगे होते हैं। लेकिन याद रखिए जो करता है वही आगे होता है। अल्लाह के नबी झूठे बंदे के साथ तो नहीं बात करेंगे ना। अल्लाह के नबी को आयशा ने कहा कि अबू बकर की बजाय किसी और को कह दें वो नमाज पढ़ाएं, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, नहीं अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। और कहा तुम सब यूसुफ वालियां हो, यानी ये औरतों को बातें करने की आदत होती है कि जी अबू बकर को कह रहे हैं तो मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुनता। और अब आपकी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिन, 1 या 2 दिन, हफ्ता या इतवार, ज़रा सी तबीयत बेहतर होती है, 2 लोगों का सहारा लेकर जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, इमेजिन करिए आंखों में लाइए वो मंजर, इमामत के मुसल्ले पे अबू बकर हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह के नबी सहारा लेकर आए। सहाबा को थोड़ा सा एहसास हो रहा है क्या हुआ, जूं ही अबू बकर को एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, नमाज की हालत में अबू बकर पीछे होते हैं इशारे में कि आप आगे आ जाएं। है कि इतनी इतबार प्यार करने वाला कि आपकी अपनी नमाज के मसल्ले से हटने लगे, लेकिन आपने इशारे में कहा कि आप पीछे ना हो और जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाओ। चुनाचे अबू बकर आपकी बाईं तरफ आ गए और उसके बाद नबी सल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में नमाज पढ़ी। यानी अबू बकर सिद्दीक थे और नबी सल्लम यानी दोनों साथ थे, सहाबा इकराम को तकबीरा सुना रहे थे, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना समय अल्लाहु लिमन हमीदा, तो पीछे एक मुकब्बर में से बोलता है ना अल्लाह के नबी बोल। यानी ये मुकाम किसी उम्मती को नहीं हासिल हुआ कि वो नबी जिसको आप कह लें कि इमामुल अंबिया, जिसने नबियों को नमाज पढ़ाई मेराज के मौके पर, अबू बकर के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती, याद रखिए, ना दुनिया में ना आखरत में। 1 दिन रह गया अब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतवार का दिन था, आपने सारे गुलाम जो भी उस वक्त आपके थे उनको आजाद करवाया, कहा इनको आजाद कर दो, 7 यानी 7 दीनार थे आपके पास, कहा इनको सदका कर दो। जो हथियार आप जंगों या लड़ाइयों और झड़पों में इस्तेमाल करते थे ये तोहफे में मुसलमानों को हिबा कर दिए, हत्ता के रात को चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था घर में, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पड़ोसन से उधार तेल मांगा। यानी अब जुमला बोलूंगी बड़े शौर से और सुनिएगा भी शौर से, और आज के मुसलमान जो करते हैं उसको भी देखिएगा बाद में शौर से। جس نبی کے گھر سے اس وقت جس دن دنیا سے جا رہے ہیں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، آج انہی کے ربیع الاول پہ جو چراغاں کیا جاتا وہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم کتنا بدل گئے، ہم تو وہ نہیں رہے، ہم ان جیسے بھی نہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 3 سال جو تقریباً 75 کلو کے جو ہوتا ہے اس کے عوض رہن رکھا ہوا تھا، گروی، اتنی غربت تھی۔ اور یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ دوشنبے کا دن تھا، مسلمان فجر کی نماز میں مصروف تھے اور ابو بکر امامت کروا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے سے پردہ اٹھا کر دیکھتے اور صحابہ کرام جو صفے باندھ کے کھڑے تھے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے۔ اپنی لگی ہوئی کھیتی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی نا کہ یہ کتنے آرگنائزڈ اور کتنے سٹیبل ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہوئے اسی سوچ میں کہ شاید اللہ کے نبی اندر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے اور میں پیچھے ہو جاؤں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکل کر دیکھنا، مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کو گلے ملیں، آپ کا مزاج پوچھیں، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور پھر آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور نہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوسری نماز کا وقت آیا۔ صبح کا وقت ہوا ہے، چاشت کا وقت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، رونے لگی، پھر بلایا، سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ اس وقت تو نہیں پوچھا، بعد میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اس دن آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا، کہنے لگی کہ پہلی دفعہ میرے باپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ اس بیماری میں میری جان چلی جائے گی۔ نبیوں کو آپ کو پتا بتا کے جان لی جاتی ہے، ڈاکٹر جو مرضی کہہ دیں، آج تو ہم دن بھی گن کے کہہ دیتے ہیں اب اتنے دن رہ گئے اور آخری سٹیج اور فلاں سٹیج، یہ انسانوں کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں رو پڑی کہ میرے باپ چلے جائیں گے، پھر دوبارہ بلا کر کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، یعنی میرے بعد اب تیرا انتقال ہوگا، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کہتی یہ سن کر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ ذرا امیجن کریے، فاطمہ اپنی موت کی خبر سن کے خوش ہو رہی ہیں، کیوں؟ تیاری کی ہوئی تھی نا، ہمیں تو ڈپریشن کے دورے پڑنے لگ جائیں اگر ہمیں ڈاکٹر پہلے ہی کہہ دیں کہ تم مر جاؤ گی۔ اور آپ نے اس موقع پہ حضرت فاطمہ کو خبر دی تھی کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور اتنی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت فاطمہ نے کچھ اشعار کہے، وکر ربا باہو، ہائے ابا جان کی تکلیف، ابا کو میری اتنی تکلیف ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ مومن پہ آخری تکلیف نزا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی تھی، کیوں؟ کہ اللہ نے درجے بہت اونچے دینے ہیں، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، دنیا میں سب برابر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو وصیت کی، ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واعظ اور نصیحت دی، نزاق شروع ہو گئی، زہر کا اثر بھی شروع ہو گیا جو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کو آپ نے کہا کہ عائشہ یہ زہر مجھے ہر سال ستاتا تھا، آج تو اس نے میری رگے گردن ہی کاٹ دی۔ پھر آپ نے صحابہ کو وصیت کی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ یا پھر ایک جملہ بولوں گی، نزا لگی ہوئی اور نبی کو فکر کس بات کا ہے؟ نماز کا۔ آج امتیوں کے بیٹوں اور بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کی نمازیں کدھر جاتی ہیں؟ پہلے تو میں اپنے اوپر رکھوں، پھر آپ اپنے اوپر رکھیں۔ جس امت نے نماز چھوڑی ہے نا، وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی، یاد رکھے۔ اور لونڈی غلاموں کی باتیں، اور پھر آپ کے اوپر نزا ہو گئی اور تیز ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا سینہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر آپ کے سینے کے ساتھ آگے، جیسے کبھی سہارا دینے کے لیے مریض کو، آج کل تو وہ بیڈ ہی ایسے ہوتے ہیں نا، بٹھا دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ٹیک لگا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ میرے اوپر اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کی جان نکلی جب آپ میرے یہ نہر، یہ سینہ، اور یہ جہاں سے ہم بولتے ہیں نا گلا، کہتے ہیں آپ میرے یہاں تھے، یعنی آپ کا سر ادھر تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آپ کو دیکھنے آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، तो कहती हैं अल्लाह के नबी की आंखों से मैं समझ गई कि आपको मिसवाक चाहिए। फिर मैंने वो मिसवाक ली, लेकिन आप इतने कमज़ोर हो चुके थे कि आप उसको चबा नहीं सकते थे, तो मैंने नबी सल्लम को जो मिसवाक थी वो चबा कर दी और आपने मेरी चबाई हुई मिसवाक की। कहती हैं ये मेरे ऊपर एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आखिरी वक्त पे आपका लुआब मेरा लुआब आपस में मिल गया। और इनके भाई थे ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जिनके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए तो सही कि किस हाल में जा रहे हैं अल्लाह के नबी दुनिया से। फिर आपके सामने कटोरा एक पानी का रखा गया, आप उसमें अपना हाथ डालते, चेहरे पे फेरते और फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम का कलमा बुलंद करते रहे, मौत के वक़्त खुद ही कलमा आ गया। कहना नहीं पड़ता मेरे लिए दुआ करो मुझे मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए, अब तो वजीफे ईजाद हो गए, ये वजीफा कर लें देखिए मौत के वक्त कलमा आएगा। नहीं, कलमा दिल में होता है, मौत के फरिश्ते को देख के जुबान पे आ जाता है। और आप कही जा रहे हैं ला इन्ना लिल मौत इला सकरात, हाय मौत के लिए बड़ी सख्ती है। फिर आपकी नजरें आसमान की तरफ गई और आप कुछ कह रहे हैं। हजरत आयशा कहती है कि मैंने कान लगाकर सुना तो क्या कह रहे हैं, तो उस वक्त अल्लाह के नबी की जुबान पे था कि अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन के साथ जिन पर तूने इनाम किया, वही माल लजीन अनम अल्लाह अलैहि मिन नबीजीन व सिद्दीकीन, सूरह निसा की आयतें। फिर आप फरमा रहे अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। और साथ ही कहते अल्लाह तू रफीक आला, तीन बार ये जुमला बोला और उसके बाद आपका हाथ झुक गया और आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। और ये वाकया 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी पीर के दिन चाश्त के वक्त सुबह में हुआ। आपकी उम्र मुबारक 63 साल और 4 दिन की थी। कुल्लू मन अलैहा फान, हर एक को जाना है। कुरान में बार बार तस्करा आता है कोई भी हमेशा दुनिया में नहीं रहेगा। इतना बड़ा गम टूटा मदीना वालों पे कि हजरत अनस कहते हैं जिस दिन नबी सल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए वो हमारी हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत दिन था। और सबसे तारीख दिन मदीना की हिस्ट्री में वो है जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए। हजरत फातिमा अपने बाप की मौत की गम सुन के कुछ अशार पढ़ती हैं। या बताहु अजाब रब्बन दाहु, या बताहु मिन मन जन्नतुल फिरदौसी मावाहु, या बताहु इला जिब्रीली नाहु, हाय अब्बा जान जिन्होंने परवरदिगार की पुकार पर लब्बैक कहा, हाय अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हाय अब्बा जान हम जिब्राइल को आपकी मौत की खबर देते हैं। ये क्या बता रहा है कि नबी गए, सबको जाना है। हजरत उमर को देखिए, ये खबर सुनकर होश चला गया, खड़े हो गए, तलवार पकड़ ली, कहा खबरदार अगर किसी ने ये कहा कि अल्लाह के नबी चले गए, मुनाफिकीन कह रहे हैं। जैसे मूसा पहाड़ पे गए थे तो पीछे से खबर फैल गई कि मूसा भूल गए, कहा नहीं अल्लाह के नबी वापस आएंगे। इतना हुआ मामला कि अबू बकर को उठ के आना पड़ा। अबू बकर अपने समा घोड़े से उतरे, मस्जिद नबी में आए, सीधे हजरत आयशा के पास गए, अल्लाह के नबी को देखा, आपका चेहरा जिस्म धारीदार जमनी चादर से ढका हुआ था, आपके चेहरे से कपड़ा उठाया और आपको चूमा। इसी से साबित होता है कि मैयत का बोसा लिया जा सकता है। फिर रोए और कहने लगे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा, यानी जो मौत आपके लिए लिखी थी वो आपको आ गई। बाहर आए, देखा अबू बकर उमर जो हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी नहीं फौत हुए। फिर उमर को सुनाते हुए सबको सुना गए जो आज हम भी एक दूसरे को सुनाएं कि मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन कदमात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो तो चले गए दुनिया से। फइन्ना अल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है वो नहीं मरेगा। आज लोगों ने अल्लाह और रसूल को एक कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह, खालिक और मखलूक का फर्क ही मिटा दिया। अकीदे की कमजोरियां आती बेइल्मी से या गलत इल्म के सीखने से। फिर उस वक्त ये आयत जो आज मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी, अबू बकर ने पढ़ी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल। साहबा कहते हैं हमें लगा कि ये आयत आज नाजिल हुई है, 7 साल पहले जहन साजी कर दी गई थी। और अबू बकर की जुबान से ये आयत सुन के फिर उमर फिर टूटे और फिर रोए फूट फूट के। मदीना की गलियां रो रही थीं, गम का पहाड़ टूटा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था सबको, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकया सच है। यहां तक कि अबू बकर की जुबान से ये आयत सुनकर लोगों के होश बाकी आए और सहाबे कराम कहते हैं कि हम तो सोचते भी नहीं थे कि कभी नबी सल्लम हमें छोड़ के जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी जान गई। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी अपनी जगह एक खूबसूरत बात है, मैं आपको दावत दूंगी। ये बिल्कुल, ये मैंने आपको जो अभी सुनाया ना, ये रहीकुम मख्तूम में से सुनाया मोस्टली, और ये सीरीज भी रिकॉर्ड है। ये मैंने जब खुद पढ़ी थी तो मैं बहुत रोई थी, अकेले में पढ़ी थी, अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ी थी। मुझे नहीं पता था आज मैं हज़रत फातिमा का गम क्यों इतना महसूस कर रही हूँ। वो उम्र ही ऐसी होती है, लड़कपन था, कॉलेज जाती थी, उस वक्त ऐसी खुद ही पढ़ी, इतना रोई कैसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि कोई वो जज्बाती वाबस्तगी महसूस नहीं की थी कभी, और उसके कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से सडन खड़े खड़े मेरे अपने वालिद की डेथ हुई, तो मुझे आंसू ही नहीं आ रहे। चारों तरफ मेरे फातिमा थी कि फातिमा का बाप नहीं रहा तो मेरा भी ना रहा तो क्या होगा। मुझे लगे मैंने जितना रोना था अल्लाह ने मुझे पहले रुला लिया, दिल में से सब्र की सिल आ गई। तो आप इससे आगे क्या हुआ वो भी बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि आपका जनाजा कैसे हुआ, आपको गुसल दिया गया कि नहीं, लेकिन वो मैं अभी इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। वो आप वहां से सुनिएगा, आप सुनेंगे, क्योंकि जो बात समझानी मकसूद थी वो आ गई है। और वो क्या है कि ये थी वो 12 रबीउल अव्वल जो नबी की जिंदगी में आपके घर में मनाई गई। खोल दें इसको बेटा। ये वो 12 रबीउल अव्वल के 13 दिन थे या एक सफर का दिन था जो नबी की जिंदगी में मनाया गया जब वो मौजूद थे। देखिए ना, आज शादी हुई तो अगले साल आज के दिन उसी दिन की याद आएगी ना, जिसका एनिवर्सरी कहते हैं। आज बच्चा पैदा हुआ तो अगले साल माँ को याद आएगा ना कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था। तो जिस जिसकी याद में हम आज मनाते हैं, वहां ये 13 दिन ऐसे गुजरे थे, गम के कि खुशी के। तो आइए जरा आज के देखिए मुसलमान क्या करता है। अल्लाह ने दिखाया क्लिप, मैंने कभी शौरी तौर पर ऐसी चीजें नहीं देखी, लेकिन आवाज कम रखिएगा क्योंकि नात तो है लेकिन पीछे म्यूजिक या पता नहीं ड्रम है, अल्लाह नुज़बर। जरा तस्वीरों पे नजर डालिएगा, जो इधर है आ जाइए, तो मुंह बोलता सबूत है कि आज का मुसलमान ये रबीउल अव्वल कैसे मनाता है। लाइट्स बंद करें इधर से, वो नहीं ये। थोड़ी सी आवाज खोल दे बस। आप देख रहे हैं पीछे, बल्कि उसकी आवाज कम इसीलिए रखिए। आप देखिए जो हमारे बाहर से साथी सुन रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी थोड़ी आवाज कम करें। आप देखिए पूरा स्टेज बना हुआ है, ये रबी लवल मनाया जा रहा है जिसमें पुतले भी हैं। आपको तय कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदतरीन अजाब क्यामत के दिन मुसव्विरों को होगा, और खास तौर पर ये जो स्टैचूज बने हुए हैं, कहीं खाना काबा का मॉडल है और उसमें लोगों देखिए ऊपर तवाफ करते हुए दिख रहे हैं, और इधर मस्जिद नबवी है, ये जमजम का कुआं बनाया हुआ है इधर, और ये बीच में बच्चों के जैसे खिलौने, लाइटें जल रही हैं, ये रबी लवल मनाई जा रही है। ज़रा सोचिए नबी के घर 12 रबी लवल को क्या हो रहा था। ये नक्शे ना लें, इधर रोकिएगा, ज़रा थोड़ा पीछे करें फ्यू सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ इसके नाते से ये मुँह बोलती चीज़ें। हाँ आएगा तो भी रोकें। ये देखिए नीचे ये जो मछली सी बनी है ना, ये देख, ये नबी सल्लम की जूती का अपने जोम में ये नक्शे नाल है। नाल कहते हैं जूती को। और आप कहते हैं इसके अंदर क्या लिखा होता है, वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाहर इतना 100 जूता पड़ा होगा, इससे भी ज्यादा होंगे। किसी जूती पे ला के कहे ना अपने बाप का नाम लिखो तो लिख सकते हैं। और कहते हैं ये नबी की जूती के सदके घर की छतों पर लोगों ने बनाए होते हैं। ये किसने बताया ये क्या हुआ, आज उम्मत कहाँ खो गई आगे। अब इसको देखकर क्या आ रहा है, फन नहीं लग रहा? ये देखिए जरा, कुर्बानी के जज्बे व मस्तकानू, और वो जो कुर्बानियां देंगे वो सहाबा किराम, अगर ये गुड्डी गुड्डे के खेल तमाशे खेल रहे होते तो क्या इस्लाम गालिब होता? ये पूरा अपने हिसाब से मस्जिद नबवी और मदीना का मॉडल बनाया हुआ इन्होंने। और आप देखिएगा पीछे औरतें मर्द इकट्ठे हैं, जिसमें पर्दा, ये वो गली बनाई हुई अपने हिसाब से कि जिसमें से इसके जो बोल है ना वो ऐसे ही है कि नबी की सवारी इधर से गुजरी। तो ये तो किसी शादी की मेहंदी उपटन तो हो सकता है, ये नबी की उस 12 रबी अव्वल से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये देखिए औरतें भी मर्द हैं और वो पानी पता नहीं अपने हिसाब से उसको कोई मुबारक पानी समझ रहे हैं और उसको भर भर के पी रहे हैं। आज तो हम रबी अव्वल के नाम पे भी वही मनाते हैं जिसमें खाने हो एंड पे, और बास लोग इसको ईद कहते हैं। मैं इंशाल्लाह नियत की है, अभी इस रबी अव्वल में 2-3 दर्स हैं इधर ही आपके शहर में, आप में से जो इंटरेस्टेड हो अब बाद में इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बंद कर दें इसको, छोड़ें। आप देखिए कि आज हमारे आज के मुसलमान में और सहाबा किराम में बस यही फ़र्क है कि वो किरदार के गाजी थे, हम गुफ्तार के गाजी हो गए हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम नारे लगाते हैं, फिर घर जाके उन्हीं की फिल्में देखते हैं, शादियों में उन्हीं के हम गाने गाते हैं। जिन दुश्मनों से हम मुल्कों के और ज़मीनों के टुकड़े लेना चाहते हैं हम उन्हीं से फिर बाद में अपना रंग और ताल्लुक मिलाते हैं। ये कमज़ोरी है, यानी अभी मेरा दर्द पूरा नहीं हुआ लेकिन वक्त पूरा हो गया। क्या आज हम मुसलमान क्या करें? मैं देखिए पूरा आप लेक्चर सुन ले, 1 घंटा 40 मिनट का ऑलमोस्ट हुआ है, जिसमें से शायद 2-3 लेक्चर निकलेंगे। मैंने कोई आपके साथ इख्तलाफी बात नहीं की, किसी मसलक किसी सोच से आपका कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। मैंने बराह रास्त आपको उन लोगों से जोड़ने की कोशिश की है जिनकी याद में ये मनाते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी का हम फर्क देख लें। और ये क्यों हुआ, आज हुआ क्यों? सहाबा की जिंदगियां और नबी की जिंदगियां जो थी आज हमारी फर्क क्यों हुई? उन मरहलों से नहीं गुजरे, उम्मत का ताल्लुक इल्म से कटा। मैं आपको दावत, असल हमारा जो मामला था ना वो सीरत नबी का था, हमने उसको मिलाद नबी बना दिया। एक आधी कोटेशन है, साथियों ने कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको देनी है, बात करनी, वो आगे आ जाए। एक आधी छोटी सी चीज़ें आपके लिए सेव की हुई हैं, वो उसमें भी मैसेज कन्वे हो जाएगा आपके आने तक, इधर मैं इंशाल्लाह सुनाती हूँ कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो, यानी जिसमें एक बहुत बड़ी बात है कि रबीउल अव्वल के साथ हम ईद मिलाद नबी का नाम लगाते हैं ना, है ना? इस सोच को ज़रा सा समझिएगा। मैं छोटी सी एक मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा आसानी से बात हो जाएगी। और दूसरी इसमें ये भी बात याद रखिएगा कि जी ये दो दोस्त हैं, इनका एक मुकालमा है, ईद मिलाद उन नबी मनाना कैसा है। एक दोस्त का नाम जुनेद है और एक का नाम अब्दुल्ला है। जुनेद कहता है अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। सुनाइए आज कैसे सुबह सुबह दुकान कैसे सुबह सुबह आ गए, दुकान पर नहीं गए? जुनेद आज तो ईद मिलाद उन नबी है, बाजार दुकानें सब बंद हैं। अब्दुल्ला अच्छा तो आप आज ईद मना रहे हैं? जुनेद तो क्या आप नहीं मना रहे? अब्दुल्ला ईदें तो इस्लाम में सिर्फ दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अदहा। जुनेद ये तीसरी भी तो ईद ही तो है जिसे ईद मिलाद उन नबी कहते हैं। अब्दुल्ला अच्छा आप जरा ये तो बताइए कि ये तीसरी ईद है, क्या इस ईद वाले दिन ईदगाह जाकर नमाज ईद अदा की जाती है? आपको पता है ना कि हमारी दोनों ईदों में सुबह नमाज होती है, तो वो पूछ रहा है क्या इसे नमाज पढ़ी? जुनेद नहीं भाई, ईद मिलाद उन नबी की नमाज तो नहीं होती। अब्दुल्ला तो बाकी दो ईदों की नमाजें आप क्यों पढ़ते हैं? जुनेद वो तो पढ़नी थी। अब्दुल्ला वो क्यों पढ़नी चाहिए? जुनेद इसलिए कि इनके पढ़ने का हुक्म है। अब्दुल्ला क्या ईद मिलाद उन नबी की नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है? जुनेद नहीं होगा ना, इसीलिए कोई नहीं पढ़ता, यानी उस बेचारे को इल्म भी नहीं है इस बात का जो वो जिसको वो डिफेंड कर रहा है। अब्दुल्ला क्या ईद मिलाद उन नबी मनाने का कहीं हुक्म है? जुनेद सुना तो नहीं कहीं, हुक्म मना भी तो नहीं है ना। अब्दुल्ला क्या इसकी नमाज ईद मना है? जुनेद मना तो वो भी नहीं है, यानी जो काम नहीं मना। आपको सिनेरियो तो समझ आ रहा है ना, आप अपने आप से पूछिए। हम अपने ओन पे जब ईद की बात करते हैं तो ईद के साथ हमारे जहन में क्या आता है? ईद उल फितर है तो उससे पहले रोजे रखते हैं, और ईद उल अदहा है तो उससे पहले हम हज करते हैं, राइट? कुर्बानियों से गुजरते हैं ना। ईद मिलाद उन नबी के लफ्ज को अगर आप रख के देख ले तो क्या इन दोनों चीजों का कोई तसव्वुर है? ईद वाले दिन रोजा रखना हराम है, आपको पता है? तो क्या 12 रबी अव्वल को रोजा रखना हराम है? ईद को नए कपड़े पहने जाते हैं, इस दिन को पहनने की कोई बात है? यानी 101 चीज़ें आपको मिलेंगी। इस पर एक लेक्चर है पिछले सालों में हुआ हुआ, क्या मनाऊँ, ईद मनाऊँ या वैलेंटाइन। और मुझे अभी भी याद है कि जैसे आज देखिए कि दिसंबर में आया ना रबी अव्वल, जिस साल मैंने वो लेक्चर कहीं दिया था तो फरवरी का महीना था और रबी अव्वल आया और 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन मना रहे थे। वही लोग जिन्होंने पीछे 12 दिन और बल्कि पूरा ही रबी अव्वल जो है वो ईद में मतलब बहुत सारे मिलाद रखे और आम दिनों से ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं लोगों की, तो 14 फरवरी को वो वैलेंटाइन मनाते हुए दिखे। तो वहाँ इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और इंशाल्लाह ताला इसके जो बाकी मौजूदात आपके जहनों में सवाल आएंगे उसको सुनने के बहुत सारे मौके हैं। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वो बात कहने और करने की तौफीक दे कि जो वाकई हकीकत में है। ठीक है, आप लोग ले लीजिए अपना वक्त जिसने जो बात करनी
है।
वालेकुम
अस्सलाम, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अल्लाह ताला हमें सीखने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेती, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिसको इन चीजों इन बातों का इन चीजों का बिल्कुल नहीं था पता, और काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, मैं अपनी कहानी नहीं सुनाती। बस थोड़ा सा ये कहूंगी कि बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मुझे कुरान को समझने की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आप देख रहे रूहुल कुरान का यहाँ लगा हुआ है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं यही कहती थी कि तफसीर एनोक फरमाए, लेकिन अब एक एक लफ्ज सुन रही पढ़ रही हूँ, खुद से पढ़ रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये अल्लाह ताला मुझसे बातें कर रहे हो, मैं अल्लाह ताला से बात करूँ, मुझे समझ आ रही है इन सारी आयतों की जो मैं खुद पढ़ती हूँ, मुझे समझ आती है कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। सॉरी उस्तादा जी, आप माजरत के साथ कहती हूँ, आप हमेशा मुझे दावत देते रहते थे कि आसमाओ सीखो, बहुत मजा आएगा ये वो, मैं कहती थी कि मैं तफसीर सुन रही हूँ, मैं मुझे समझ आ गई, जिंदगी गुजारने का तरीका मुझे समझ आ गया, तो दे होले उस्तादा जी, मैं आ जाऊंगी, मैं इंशाल्लाह आ जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते ही होंगे कि मैं दरसों में आती रहती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन उस्तादा जी की बात को मैं फिर से लेती हूँ कि मुझे किसी वक्त ऐसा लगता था कि उस्तादा जी शायद मुझे मुआसे कर रही है, तो लेकिन फिर बाद में फोन बंद होता था या मैसेज स्टॉप करती थी तो आंखें बंद करके कहती थी कि अल्लाह जी ये जो कह रहे हैं कि मेरी बेहतरी के लिए कह रही है, मैं इनको कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं अल्लाह जी मेरा जहन इतना नहीं है कि मैं खड़े कर पाऊँ, लेकिन फिर बाद में इनको दुआएं दे देती थी कि मुझे अल्लाह के लिए बुलाते तो है ना, तो मैं मेरी सांस पे ना जाइएगा, ये खुशी के जज्बात हैं जो मैं शेयर लाजमी करना चाहूंगी, शायद आपके लिए फायदेमंद हो कि मुझे मुझे अल्लाह ने चुना है और इस चीज का मजा लिया है, तो आप भी इंशाल्लाह ताला इसी में आएंगे। तो फिर इसी तरह करते 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 3 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब दोहरा कुरान आया था, फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने कहा उस वक्त जज्बा बहुत चढ़ा, फिर मुझे लग रहा था उस्तादा जी कह रहे हैं, बस उस्तादा जी कह रहे हैं, बस मैं आपको अपनी दिल की बात बता रही हूँ, तो फिर उसमें मैंने कहा अपने आप को अंदर अपने अंदर देखा कि आसमा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने तुम्हें पता चल गया ना मकसद क्या है, शैतान बस वैसे डालता है ना इंसान के अंदर, तो वो मेरे अंदर बार बार यही चाह रहा था कि नहीं तुम्हें पता चल गया है, तुम बच्चों को अच्छी तरह और अच्छी तरह फंस फुका रही, और अच्छी तरह समझा रही, और अच्छी बीवी और अच्छी माँ, तो ये सारे रिश्ते और रिश्तेदारों के साथ सारा कुछ वैसे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब है कि हद से बढ़कर अपने प्यारों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ कोशिशें करती हूँ, और अपने ये जो साथी बैठे हैं इनको देखती थी, ये ताहरा जी मेरे साथ बैठी हैं, फरहाना जी बैठी हैं, सोबिया बुशरा मेरी दोस्त, बुशरा मेरी, फरहाना जी और जिनके नाम ना लिए प्लीज नाराज ना होइएगा तो मैं बस आप सबको देखती थी, तो मैं कहती थी अल्लाह जी अभी तो मेरे करने ना, मैं मनु नहीं आता एक संत, मैं नहीं खिलारे पा कर पाऊंगी, आसमा तुम आ रही हो, तुम्हें दिल में तसल्ली रखनी चाहिए कि तुम आ रही हो, मैं बस, लेकिन जब मैं इनको मिलती थी तो बस उनको देखती थी, शायद किसी मोड़ पे देखते हों कि आसमा हमें इतना घूर के क्यों देख रही है, लेकिन मैं उनमें वो खूबियां देखती थी मेरा दिल करता था ये अल्लाह के लिए सारा दिन बैठ आ जाते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी जिम्मेदारियां, इनका भी सारा कुछ है। अंदर अपने अंदर कुछ महसूस करती थी कि मेरे अंदर कुछ मंगल है, तो मैं फिर वही बात हुई, रूहुल कुरान का कोर्स शुरू हुआ तो फिर वही जज्बे, ये तो अल्लाह ताला जिंदगी दे सबके लिए कहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील होता था ये आसमा तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुंह सूख रहे कोई बात नहीं, बाद में पानी पी लूंगी। तो
ले लो पानी, ले लें पानी।
जज़ाकला है। जज़ाकला है वसना जी। हाँ जी, मैं अपनी बात पे फिर से आती हूँ। फिर उसके बाद रूहुल कुरान का माशाल्लाह जिस तरह अनाउंस हुआ तो मैं भी वहां बैठी हुई थी, जब उस्तादा जी सामने देख रही होती थी, वो तो सबको देख रही होती थी, मैं आंखें नीचे झुका लेती थी कि मुझे मुझे तो मैं तो कर नहीं पाऊंगी, ये एक उजर था मेरा, मैं तो कर नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह की करनी क्या हुई कि एक दिन मैंने कहा कि फिर तो करूँ ना, कि एक दफा ट्राई तो करूँ ना, कल अल्लाह को ये तो बता दूंगी कि अल्लाह जी मैंने कोशिश तो की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैंने बैठ के, पहले तो मुझे तरीकेकार ही ना समझ आई कि तर्जमा किस तरह याद करूँ, क्या करूँ क्या करूँ, वो भी अल्लाह ने मुझे सिखा दिया। बार बार यहाँ पे लाइव क्लास तो होती है, सारा कुछ होता है, मैं घर में जाके घर में रिकॉर्डिंग बार बार सुनती थी, एक एक लफ्ज बंद करके फिर से लगा के वो फिर से लिखती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐप पर जाके आप देख लें, थ्रत्न मित्र का कभी थीम मित्र का ऐप में है, वो मेरा थ्री थीम में लग जाते थे वो तर्जमा, एक एक करके स्टॉप करके फिर लगाना, वो मैं अल्लाह की तौफीक से घर में बैठ के करती हूँ। मैं आप सबको बार बार नहीं कहना चाहती, जिस तरह आप सुन रहे थे आप भी कि कुर्बानियां देते हैं सहाबा-ए-किराम ने कुर्बानियां वगैरह दी सारा कुछ, तो इसमें कोई शक नहीं, हमारी तो वो कुर्बानियां ना होने के बराबर है, लेकिन मैंने ये चीज सिलसिला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ सुबह सुबह उठ के जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस जब मेरा पहला टेस्ट मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह का था सबसे पहले टेस्ट, वो मैं आपको यकीन ही बता सकती कि मैं बार बार टेस्ट को ऐसे करके देखती थी, ऐसे कभी करती थी, कभी ऐसे करती थी, कभी ऐसे करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सारा सीखा किया, एक एक लफ्ज मेरा बिल्कुल ठीक। और मैंने अल्लाह ताला से कहा ये मैंने किया, जो अपने आप को वाकई अपने आप को मशहूर भी कर दिया हुआ है। मेरी बेटी मुझे गुस्से होती है, कहती है मम्मा आप हर वक्त कहती रहती है कुन दिमाग, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कह वालिया जो सच है वो क्यों मैं छुपाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कह सकती हूँ कि मैं इल्म हासिल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये इल्म हाँ जी मुश्किल अल्फाज नहीं आते मेरी जान, इंशाल्लाह आपसे सीखूंगी। तो इंशाल्लाह अब ये जो तकमील भी हो रही है इसकी मुझे इसलिए खुशी है कि यह खलसा आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुंडल माग नहीं हूँ और मैंने सीखना है और इंशाल्लाह ताला ये सीख के इसको आगे करना है, और इंशाल्लाह ताला ये जज्बा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ ये जज्बा मेरे में रहे। और एक और बात करना चाहूंगी, नूरीन जी की मैं शेयरिंग सुन रही थी, वो कहते हैं कि वो 3 साल से इधर हैं तो वो अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, मैं भी रोती थी, मैं भी बहुत रोती थी कि जी मैं तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं ये पहले भी मैंने बात बोली है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं खुद तो सही हो ना, मैं खुद सीखूंगी तो मेरे बच्चे होंगे ना, और इंशाल्लाह ताला वो भी मंजिल दूर नहीं होगी, इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो मैं कर रही हूँ वो बच्चे देखेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। और सबसे बड़ी बात सारी बातों का खुलासा, मैं खुद ठीक होंगी और इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे मेरे साथ साथ होंगे। मैं पहले ये भी सोचती थी कि मेरे वैसे अमल है नहीं है, और ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट था कि शायद कि मेरे ये अमल नहीं है तो मैं इसलिए भी नहीं सीखूंगी आगे, लेकिन अब मेरे में वो जज्बा आ गया, मैंने अपनी कब्र में जाना है और अपने लिए आगे का सोचना है, और इंशाल्लाह पहले मैंने खुद ठीक होना है, इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी होंगे। और ये बार बार मैं जुमला बोल रही, मुझे अपने बच्चों के ख्याल आ रहे हैं, मैं बड़े आपको उनकी बातें भी बता सकती हूँ लेकिन भी टाइम इतना बहुत मैंने पहले ले लिया है। लेकिन ये मैं कहूंगी कि बच्चे हमारे हमारे साथ हैं और वो साथ साथ हमें देख रहे हैं और वो ही बातें करती है जो हम जो मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा आप मेरी तरफ से बता दें प्लीज, बता गई हूँ। और एक और बात, आखिरी बात, उस्ताद जी जैसे उस कह रहे हैं ना कि उस्ताद का होना है, मैं उस्ताद जी से इतना प्यार करती हूँ जितना सामने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मेरे मुझे हदायत का रास्ता जिसने दिखाया है उससे उससे मैं उनके लिए दुआएं से बढ़कर और कुछ नहीं। आई लव यू उस्ताद जी।
حبك الذي أحببتني له. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير فاتي آپكي شيرينغ سے ما شاء الله سب کو ایک تو جذبے اندر آتے ہیں اور یہ کہ الحمد للہ ویلدی موتی بے رہنا تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، تھوڑا سا بتاؤں گی اپنے اسکول کے بارے میں، تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی کہ ہمارے جو کورسز ہو رہے ہیں جو پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا میں جلدی جلدی میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں جو ہمارا فلائٹ کھلا ہوا ہے وہ ہم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک تو آج ربیع الاول کا پروگرام تھا، ایک ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر اس کے درمیان کوئی درس نہ آیا تو وہ الگ ہے، لیکن جو ہمارا اور پروگرام ہو رہا ہے وہ ربیع الاول کا سپنے میں سپنے دسمبر کو ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹائمنگ ہے 4 سے 6 بجے تک اور وہ ہوگا خار فسنس بھائی این ڈیڈ ڈیڈ این نیدر فسن گور، جو سب کو پتا ہوگا جو نیا بانا گیا نیدر فسن گور، اگر نہیں پتا تو وہ تیرے بر تھاڑے کو گوگل میں آپ جہاں سے بھی، اگر نہیں تو آپ یہاں فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کدھر ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو نستے ربیع الاول کا پروگرام ہوگا وہ ہے نیدر فسن گور میں ستومنر میں، اور جتنے بھی ساتھی آپ ستومنر میں لوگوں کو جانتے ہیں ان کو ضرور بتائیے گا کہ ان کے پاس بھی ملیت ہو کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکے۔ خدا فرا کلوکا پھر تھے سیکس۔ اب میں آتی ہوں اپنے جو ہمارے پروگرامر ہوتے ہیں، ہمارے خوش ہوتے ہیں ادھر ہمارے اسکول میں، جو اسٹارٹ کرتی ہوں ماندا سے لے کے ماندا سے تھوسٹک تک ہمارے جو فل ٹائم کورسز ہیں جن کی آج تکمیل ہے وہ روح القرآن ہے، انہوں نے ماشاء اللہ آپ سورۃ البقرہ کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ماندا تھیل تھوسٹک، یہ چوکا تھی تھل ہال تھو 10 سے لے کے 1:30 بجے تک 4 دن ہفتے میں، منڈے سے لے کے ٹیوزڈے تھرسڈے تک، وہ یہی روح القرآن کورس وہ ہمارا ایک دن کو ہے، اور پھر شام کے جن کے پاس دن کو ملحت نہیں ہوتی وہ یہی کورس جوائن کر سکتے ہیں شام کو۔ شام کو دیا لی تھی اسٹارٹنگ فسٹ پارا میں دیا سامان ہیلتے سامان کو ہیلتے سامان تفسیر، تو وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ 3 دن ہفتے میں ماندا تھیسٹا انس تک، ٹائمنگ ہے 7 یعنی کہ 5 سے لے کے 7:30 تک، داڑ لیت فر کھوٹے تفسیر اور تجوید۔
یعنی ایک منٹ میں تھوڑا سا اردو میں بھی بتا دوں، یہ جو روح القرآن کی جس کی آج سورہ بقرہ کی تکمیل تھی تو یہ صبح میں ہوتا ہے نا، تو کچھ ساتھی ہیں وہ سارے صبح کو نہیں آ سکتے تھے، تو پھر ہم نے جب پہلا پارا پورا ہوا تھا تو شام کو صرف 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 5 سے 7:30 بجے ہفتے میں صرف 3 دن منڈے ٹیوزڈے وینسڈے شام کو بھی شروع کیا ہوا اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہماری تو سورت بکرا گزر گئی اب ہم کیا کریں، تو پہلی بات ہے گزر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، پیچھے 112 صورتیں موجود ہیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ آپ صبح میں آ سکتے ہیں تو منڈے سے ہمارے ساتھ جوائن کیجیے انشاءاللہ۔ ہم تیسرا پارا پورا کہ چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے منڈے کو، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور اگر آپ کام کرتے ہیں یا کوئی اور مصروفیت ہے تو آپ شام والا بھی جوائن کر سکتے ہیں، شام والے میں سبق ابھی پہلے ہی پارے پہ ہے ایسے ہی ہے نا، اور صبح والے میں اب تیسرا چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اب چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ پھر ہم آپ کو 5 باروں کی تکمیل پہ بلائیں گے، ہاں تو یہ کوشش کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنے گا، آپ لوگ ضرور سوچیں، ویکینڈ پہ بھی ہوتی ہیں کلاسز وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں انشاءاللہ۔
تو یہ کہ دن میں جو ہماری کلاسز وہ روح القرآن دن کو اور شام کو، اس کے علاوہ ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں تفسیر کی وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو سبیل ہوتا، وہ کون سے پارے میں پہنچ گئے،
سورت نور چلی ہے اس میں بھی،
تو نور چل رہی ہے، تو یہ کہ دیکھو مطلب ولدی لنگ فرام من ایون سے تک کے فر شائن تو بھی نا، جہاں بھی قرآن ایک ایسی چیز ہے ہم جہاں بھی اس کو پکڑتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ سورت نور میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کا ٹائمنگ ہے صبح 10 سے لے کے 2:30 بجے تک 2 دن ویک میں سیٹرڈے اور سنڈے۔ اس کے علاوہ ہماری جو کلاسز ہیں آؤٹ سائڈ یعنی کہ جو اسکول سے باہر ہیں اس اندر بائک سے باہر ہیں، وہ 3-4 جگہ وہ ہیں، ایک ستمبر میں ہے، ستمبر میں ہوتی ہے 2 دن کلاسز ہوتی ہیں انس تک اور فری تک، ان کا ٹائمنگ ہے 5:30 سے لے کے 9 بجے تک، तो वो अब माशाल्लाह आप 5th पारे पे उधर पहुंचे हुए हैं। मोस्ट में हमारी एक क्लास होती है, हर संडे को संडे होती है, और वो क्लासेस होती है मुस्के में होती है, वो 11 से लेके 2 बजे तक है। स्त्रमिन में हमारी एक क्लास होती है, वो स्त्रमिन मुसेव में उसमें होती है हमारी, थोस्टॉक और फ्रेदा, यानी कि वहाँ 2 कोर्सेज हो रही हैं, एक तफसीर का कोर्सेज हो रहा है और एक शॉर्ट कोर्स है। तो अगर आप एक दिन भी जा सकते हैं तो ये कि आपको मिस नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई स्त्रमिन में रहता है तो हार्डर में लिखे थी कि वो उस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। एक हमारा क्विज हो रहा है फुलमिलिया में हमारा होता है हर फ्रेदागर को 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक। एक बीआरके को रिफ्ता स्कूल में होता है, वो फ्रेदा और संदा को 2 दिन होता है, वो भी 5th पारे पे लगते पहुंचे हुए हैं जी। 5th पारे पे वो भी हैं, वो 5:30 से लेकर 8 बजे तक वो है। उसके अलावा हमारी जो बच्चियों की क्लासेस होती हैं नुश्क में, वो यानी कि जो हमारा नुश्क में फ्यूचर बाइंग की फरदीस है, वो तफसीर तजवीद ट्रांसलेशन सब कुछ बच्चों के लिए नुश्क में लड़कियों के लिए है, वो बाई थी फरदीसा मंदा तीसरा उन्स तक, वो 5:30 से लेकर 7:30 तक उनकी होती है। तो उसके अलावा हमारे पास लड़कों की क्लास होती है, लड़कों की क्लास हर सैटरडे को 11 से लेकर 2:30 बजे तक है। वहाँ हम बच्चों को तफसीर और प्रोफेट सीरा के बारे में और प्रोफेसर के बारे में ये और बेसिक उम्र इस्लाम के बारे में सिखाते हैं। हर लोडागे को हमारे पास बच्चों की क्लास होती है जो
अपना पूछता है। आप में से हो सकता है इतनी इन्फॉर्मेशन सुन के आप लोगों को याद ना रहे, तो जिसका जो भी कंसर्न इशू है वो आप बाद में इंडिविजुअली भी पूछें। एक चीज़ जो बहुत आसान है सबके लिए जो दूर से भी आते हैं वो है व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में से किसी ना किसी ग्रुप में हैं, वो हैंड रेस करेंगे? बहुत कम है। एक छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट की, डैडी दिखा जी, NQDonation.com पे है ना जी। आप अगर बाहर अपने फ़ोन नंबर्स दे के दें, आप लोगों ने सबसे लिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। अगर आपने नहीं दिया और आप चाह रही हैं आपको ये सहूलत मिले तो आप जाते हुए दे दें जो आपका सेल नंबर है जिस पे आपका व्हाट्सएप नंबर है। इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी ग्रुप में डाला जाएगा, डिफरेंट होते हैं तफसीर के, सीरा के, तस्किया तरबिया, तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक ज़्यादा में से जिसमें आपका रहने को दिल चाह रहे उसका तरीका ये होता है, एक छोटा सा क्लिप भेजा जाता है आपको, कुछ ग्रुप्स में हफ्ते में 4 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 1 दिन, तो फिर आप उसको सुन के अपने सहूलत से रात को दिन को बैठकर सुन सकते हैं, यानी एक रास्ता खुल जाता है आपके लिए। तो इसके ऊपर वीडियो भी है, अगर ये दिखा सकते हैं आपको तो दिखा देते हैं, नहीं तो ये है कि बस इनका एक आखिरी स्लॉट है कि इनाम और रिवॉर्ड देने, वैसे तो मेरे मिजाज में कोई नहीं है क्योंकि मुझे पता होता है कि ये अल्लाह सुभान व तआला के लिए लोग करते हैं, लेकिन एक वही बात है कि तहदीस नेमत होती है, तो जो भी लोग कुरान जहाँ पढ़ते हैं वो कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहते ना वो कुछ है, लेकिन एक कहना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई छुट्टी नहीं होती, आने वाले तो सबको ही गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग इधर रिजल्ट्स नहीं देखे जाते, यानी आपके 10 में से कितने नंबर हैं ये नहीं देखे जाते, किसी को नहीं पता होता। ये जो अभी प्रोवे का बार बार जिक्र कर रही थी और कई लोगों ने उसी की वजह से इरादा बदल देना आने का, प्रोवों का जिक्र नहीं करते जब भी कोई ऐसी बात होती है, लेकिन ये इनका शौक है, ये देखना प्रोवे का प्रोवे समझते हैं, अभी बाहर वाले कह रहे होंगे मुझे क्या हो गया, टेस्ट को टेस्ट क्यों लिए दिए जाते हैं कि पता चल जाए कि आपको उस्ताद ने ठीक भी पढ़ाया कि नहीं। सारे स्टूडेंट एक ही गलती करेंगे तो वो उस्ताद की गलती होगी ना, तो ये देखने के लिए होता है और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस ये देखें एक एक क्लास पे अजर बहुत है ना। तो आप इसको अपने लेवल पे जैसे लें, लिखना चाहते हैं लिखें, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ये तलब हो। और आप कहेंगे मिलेगा क्या रूहुल कुरान करने से, क्या मिलेगा? एक जुमले में मैं इसका आपको जवाब दे सकती हूँ कि जब आप तिलावत सुनेंगे या करेंगे तो आपको समझ आएगी ये कितनी बड़ी बात है। हमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं जब वो हज पे जाते हैं, वहाँ रोते हैं। मुझे कई स्टूडेंट्स के मक्का से मदीना से फ़ोन क्या आते हैं कि हमने आपको बड़ी दुआएं दी क्योंकि जो इमाम साहब पढ़ रहे थे मैं समझ आ रही थी, या रमज़ान की तरावियों में जब रोज़ का एक सपारा सुनते हैं तो रोते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ सब कुछ एक साइड पर कर दें दीन का, फिकी इशू इधर आते ही नहीं है, हमारा कोई मसलक नहीं है। ये शायद नए लोगों में से कुछ का जहन हो, सवाल हो, हमारा कोई मसलक नहीं है। आज जिनके साथ मुलाकात की है ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये सारे हमारे हीरोज़ हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों हमारे इमाम हैं। हमारा कायद एक है और हमारा कायद आज़म भी एक है और हमारा मुफ्ती आज़म भी एक है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद बाकी सारे जो उनकी बातों के अंदर है वो हमारे हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी एक नाम के साथ किसी को नहीं जोड़ते। इसी ने आज उम्मत को तोड़ा हुआ है। लोग आज हमें इस मुसलमान होने पे दुश्मनी बन देते हैं, लेकिन हम आपस में लड़े हुए हैं। हम नमाज कोई ना पढ़े फिक्र नहीं करते, पढ़े तो इस पे गम लग जाता है कि ये किस तरीके से पढ़ रहा है। तो जिसको जो स्कूल ऑफ थॉट रखना रखे, ये गवाह हैं बैठे, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप सबसे पूछ लीजिए, 6 साल से 8 साल से भी आने वाले हैं और 6 माह से भी आने वाले हैं, यहाँ कितनी दफ़ा नमाजों का तरीके की बात होती है, कज़ाए उम्रियों की होती हैं, औरत मर्द का फर्क पता ही नहीं। हमारा इशू फिक है ही नहीं है, फिक तो एक अलग इशू है, हमें तो बस एक अच्छा मुसलमान बनना है। अल्लाह ताला तौफीक दे। तो ये सहमति आप अनाउंस कर दें या इनको दे दीजिए जैसे जल्दी से। तो इसमें यह है कि जो स्टूडेंट सभी के लिए गिफ्ट होते हैं, लेकिन यह है कि जो जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, ये चीज़ें काउंट की जाती हैं कि शौक से आते हैं और टाइम पे आते हैं, यूनिफॉर्म ठीक रखते हैं, यानी रूल्स को फॉलो करते हैं ना। कुछ की मजबूरियां होती हैं, वो अल्लाह के पास उजर है, यानी उजर है उनका। तो थोड़ा सा आप ले लें इस पे टाइम, तो फिर इंशाल्लाह हम छोटी सी दुआ करते हैं।
कोई पैदा तू ही पैदा करने वाला है, इस लफ्ज ने इस इन पहली आयतों ने जब पढ़ा इया का नाबुद, इस इया का में इतनी शिद्दत पाई मैंने कि तेरी ही हम इबादत करते हैं। या का नाम भी तो या का नसर तुझे ही से हम मदद मांगते हैं। वो इतनी जहलियत थी मेरे खानदान में, इतनी जहलियत थी कि इन बातों से मुझे पता ही नहीं, आयतों से मुझे पता चला कि अल्लाह तेरे सिवा तो कोई नहीं है, हम किधर जा रहे हैं, हम किसको मानते हैं, किसको पूछते हैं। जब हम कहते हैं कि तेरी इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं, तो फिर दूसरा कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में घराने में बहुत जहलियत, अब मुझे पता चला कि इंसान तो बुरा नहीं है, अल्लाह ने तो इंसान को बुरा नहीं पैदा किया। बुरी क्या चीज आई, जहलियत। जहलियत बुरी है, जो हम में जहलियत आ गई है, इसको हमने दूर कैसे करना है, इलम से। यह जो हम इलम सीख रहे हैं, इस इलम से इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना कुछ मिला है। उस्ताद जी का दर्स उधर होता है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास भी उधर होती है, वो सभी लोग जब जहलियत के अंधेरों में डूबे हुए थे, सब के सब भी अल्लाह के फजल से अपनी औलादों को कोई हिफाज करवा रहा है, नमाजें नहीं मिस करता, कुछ मतलिशरा वो चल रहे हैं। तो ये जहलियत जो है ना, ये जिला, ये सबसे बड़ी दुश्मन है। इधर आना है सिर्फ अल्लाह उधर उनको ही बुलाता है जिसको अल्लाह खास कर लेता अपने लिए। तो ये आज से इरादा करे कि अल्लाह हम ही नहीं तेरे खास बंदे, हमें भी तो तूने पैदा किया है, हम क्यों नहीं आए, हम भी इधर आते हैं, तेरा इलम सीखते हैं। तो इलम से इलम के बहुत फायदे हैं, इलम इंसान को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। इलम इंशाल्लाह आपके साथ साय की तरह साथ साथ चलेगा, ना आप छोड़ेगी ना इलम छोड़ेगा, साय की तरह साथ साथ रहेगा। तो आप सब आना सिर्फ आपके इधर, लेकिन आगे फिर अल्लाह आपके आगे दरवाजे में खड़ा है, पकड़ लेगा हाथ आप। आज मैं आपको पकड़ लेता हूँ, कोई फिक्र नहीं, अब नहीं जाओगे इधर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इतने सालों में तो नहीं हुआ, अब कुछ हुआ है मतलब थोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ मेरे बच्चों पागल हो गए, मामा क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रहे, क्यों जा, अब मैं आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दर्द दीवार जो है सारे मेरे से मुझे लगता है प्यार करते थे, मुझे तो कोई याद नहीं आता बाहर का, किधर गम है, किधर परेशानी है, किधर कौन है बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने घंटे हम इधर गुजारते हैं उस वक्त तक तो हम सुकून में रहते हैं, इतना सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि 4 घंटों में हमारे दिनों में कोई बात ही नहीं आती बाहर की, बच्चों की बात नहीं आती, बाहर की नहीं आती, किसी बीमारी की परेशानी की बात नहीं आती। आप आके देखें, आजमा के देखें, इतना सुकून मिलेगा कि आपको आप पर जाने को जी नहीं चाहेगा। जज़ाकअल्लाह है जी, अस्सलाम
वालेकुम। पता चले वो गावा खुद लेके चल पड़ी।
मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक इनको इस्तकामत दे, इनका जज्बा मजीद बढ़ाए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मजीद इल्म हासिल करें।
हां जी, दूसरी हमारी प्यारी साथी है इधर, यहाँ पे
इनको दे दे।
सोफिया नवीन है, सोफिया जी है यहाँ पर। हाँ जी, सीजन नकीना तारीख है आवाज है, उनके भी माशाल्लाह यूनिफॉर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ के 2-3 दिन तो वैसे पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ पी के अभी तक बिल्कुल पूरी।
ये वही है जिन्होंने आने से पहले बहुत सवाल जवाब किए थे कि मुझे कोई कोर्स तो नहीं मिल जाएगा और मुझे गर्मी तो नहीं, और یہ وہی ہیں
پاکستان میں گزرا اور وہ اس وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے، مگر جب سے یہ واپس آئے الحمدللہ تب سے کوئی بھی چھٹی ان کی نہیں ہوئی، یونیفارم بھی الحمدللہ پورا ہوتا ہے، گڈ اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اس پہ قائم رکھے بالکل.
جی پیاری بہنوں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک کورس لیا تھا لینگویج کورس، تو مجھے ڈانٹ بھی پڑی اس کورس پہ پڑی کہ میں نے چھوڑا کیوں، تو میرا دل جو ہے مطمئن نہیں تھا، میں نے فیس بھی دی کیونکہ میں برٹش تھی اس لیے مجھے وہاں فیس پے کرنی پڑی، اور میرے ہسبینڈ نے یہی مجھے کہا تھا کہ فضول کاموں میں نہیں یہی جاؤ، یا میں نے فیس دی ہے، میں نے اللہ کی راہ میں وہ فیس قربان کی کیونکہ میرا دل مطمئن نہیں تھا، جہاں میرا دل تھا اس کلاس میں بیٹھ کے بھی میرا دل ادھر ہی ہوتا تھا، تو میں نے اس کو چھوڑا، الحمدللہ میں یہاں آئی ہوں اور میں نے میں اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کروں میں نہیں کر سکتی، تو مجھے ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کی جو مجھے لذت مل رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتی.
افسوس تو نہیں ہوتا وہ
مجھے اپنے جو پیچھے چھوٹا ہے، جتنا مجھے بلیو کریں گے ساری زندگی جتنی میں نے ضائع کی ہے اس سے بڑھ کے مجھے اس کا دکھ ہے کہ جو میں نے ٹائم جو ضائع کیا ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ جو ہی مجھے ٹائم ملے میں یہ شام کی کلاسوں میں آ کے جتنا بھی میرے سے پورا ہو سکے میں کروں، اور میرے لیے دعا کریں پلیز، میرے لیے بہت ساری اس معاملے میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کورس میں پورا ثابت قدم رکھے، کیونکہ میری راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، مشکلیں بہت ہیں، اور اللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا، میری نیت میرا دل جو ہے نا وہ بالکل صاف ہے اس معاملے میں، اللہ جانتا ہے اس کو اور میری نیت پوری کرے گا، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے.
جی میں انصر جی کو بلاؤں گی کہ استاد صاحب کے لیے ماشاء اللہ یہ بھی اتنے پیار سے وہ یونیفارم میں ایسے صبح ٹائم پہ آنے والے، کبھی لیٹ نہیں ہوئے الحمد للہ، اور اپنی اتنی ہی کوشش کے ساتھ، اور ٹیسٹ وغیرہ بھی الحمد للہ ابھی تک پورے ہوتے ہیں ان کے، اور کوئی بھی اس میں ٹیسٹ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے، لکھنے میں تھوڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ 5-7 منٹ اوپر لے لیتے ہیں، اور ماشاء اللہ پھر بھی پورا بہت اچھے طریقے سے الحمد للہ ٹیسٹ وغیرہ پورا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ثابت قدم رکھے. ہاں جی آگے میں بلاؤں گی صفیہ بیگم کو. جی جی یہ بھی کچھ عرصہ بیچ میں بس چھٹیاں ہوئی ان کی تھوڑی بیماری کی وجہ سے، اور کچھ مگر یہ کہ ہمت نہیں ہارتے ماشاء اللہ، کلاس میں آخری دروازے کے پاس کھڑے تھے لبیک بول دیتے کہ میں آ گئی ہوں، تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت تندرستی راستے والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے. اور ایک ہماری بہت ہی پیاری سی مریم کیانی جی، ماشاء اللہ بیٹھ پہنا ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے آتی ہیں، حیدرآباد سے آتی ہیں یہ، اور بس راستے سے فون، باجی میں اتنے منٹ پہ پہنچ گئی ہوں، بس یہاں پہ بہت رش ہے، بس نہیں چل رہی ابھی، اور اس طرح مگر یہ ہے کہ الحمد للہ الحمد للہ تعالیٰ ان کے آنا قبول کرے، اور جتنے بھی راستے کی مسافت میں انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یا جتنے قدم چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ان کو بہترین جزا خیر دے، قیامت کے روز میزان میں ان کے اس وقت کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ تولے. باقی ہماری آسما جی ہیں، ٹیسٹ والے دن ہم ان کو دیکھتے ہیں، پیاری سی آسما جی جو اپنی پیاری پیاری شیئرنگ کرتی ہیں ہمارے ساتھ، ٹیسٹ والے دن آتے ہیں بھاگتے بھاگتے اور اس پارا پکڑا ہوتا ہے ساتھ دھرا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت دے.
میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے الحمدللہ. سسٹر مریم صدیقہ ہے، میں اسپیشلی انہیں بلانا چاہوں گی، ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری اسٹوڈنٹ ہے ہماری، اتنی اچھی کہ جن کو دیکھ کے بہت مجھے خود بھی بہت موٹیویشن ملتا ہے کہ اس حالت میں بھی یہ چھٹی نہیں کرتی، بخار ہو بیمار ہو اور پلس دو دو اللہ تعالیٰ کام ان سے یہ حالت،
بلکہ ان کا بتائیں کہ یہ بیبی سٹنگ میں بیٹھ کے پورا لکھتی ہیں ساتھ نا، ان کی ڈیوٹی بیبی سٹنگ میں ہے نا، تو میں ان کو بنیاد بنا کے ان سب ماؤں کو کہوں گی جو اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں آتے. آپ دیکھیں کہ اصل علم کی ضرورت بچوں کی ماؤں کو ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، تو یہ بچوں کو دیکھتے بھی ہیں ساتھ، اپنا بھی بیٹا آپ نے ابھی بھی دیکھا ساتھی ہے، اور 5-6 بچے اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نوٹ ساتھ پورے لے رہی ہوتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ کوشش اللہ ضائع نہیں کرے گا نا، تو کبھی اپنے بچوں کو وجہ بنا کے گھر نہ رکیں. ورنہ یہ آپ کے لیے فتنہ بن جائیں گے. تو آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, ایک دو دن میں بچے سیٹ ہو جاتے ہیں, یہ پورا کمرہ بھرا ہوتا ہے پیچھے بچوں سے, آپ کو اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. صرف آپ یہ نیت کریں کہ میں نے اپنے ان بچوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ.
ایک اور ہماری سسٹر ہیں سائشہ عباس, انہوں نے بھی جب کورس جوائن کیا تو بالکل ان کے یہ لاسٹ منتھ چل رہے تھے, اور لاسٹ ڈے وہ کلاس میں آئی ہیں اور اس سے اگلے دن وہ ہاسپٹل میں ان کا بیٹا ہوا ماشاء اللہ تعالیٰ, ان کے بچوں کے بھی ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور آج بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب میں ہاسپٹل سے گھر آئی ہیں نا کل, تو کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آؤں, مگر وہ نہیں آ سکی, مگر کہ لاسٹ ڈے تک الحمد للہ وہ کلاس میں موجود تھے. تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں ہماری. اور سسٹر صبا عارف بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ سامنے, ان کی چھٹیاں تھوڑی ہو جاتی ہیں, تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہیں کلاس میں, مگر ظاہر بچیاں ہیں, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دیں اور یہ شوق ان کا جو ہے وہ برقرار رکھیں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس عمر میں, تھوڑا سا بندہ مطلب لاپرواہی کا وہ کر دیتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثابت قدمی دے اور یہ اسی طرح یہاں پر آتے رہے. جیسے علیشہ اسفر ہیں ہمارے ساتھ کورس جوائن کیا, ان کا بھی چھوٹا سا بیبی ہے اور وہ تھوڑا مطلب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ریگولر ہو سکے, مگر ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں اور ان کے لیے بھی یہ گفٹ. آ جائیں علیشہ جی, اگر آپ کچھ کہنا بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں سامنے نا. تو بس یہی بھیجی تھی, وہ ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹوڈینٹ ہیں, اور اگلی کل مجھے اپنی عمر بھی بتا رہی تھی کہ بیٹا میں 60 سال کی, شاید 60 سال ہی بتائی تھی, آپ معاف کیجیے گا اگر کوئی کمی بیشی کر دی ہے سالوں میں. تو اس ایج میں بھی مطلب اتنی دور سے وہ ماٹنسور رہتی ہیں اور وہاں سے آنا ماٹنسور رہتی ہیں یا حل ملیا, تو وہاں سے وہ مطلب آتی ہیں بسوں وغیرہ پہ نا, تو بیمار بھی رہتی ہیں تھوڑا تو, مگر اس کے باوجود ان کی شاعری ہم سنا نہیں پائے, اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو شاید مائک لے کے زبردستی کر ہی لیتی, مگر انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجی تھی, ان شاء اللہ گروپ میں بھیج دوں گی.
ابھی دعا کے بعد جب اٹھ کے لوگ جا رہے ہوں گے تو ہم پلے کر دیں گے, سن لیجیے ٹھیک ہے.
تو اگر کوئی رہ گیا اسٹوڈینٹ
ان کو دے دیں گے نا پرسوں,
تو وہ آپ لوگوں کو پرسوں دے دیں گے. اب دعا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, دعا کے بعد ہم لوگ ملیں گے.
آپ لوگوں نے اب کب ملنا ہے, یہ سارا اپنا ہی کہانی سناتے ہیں, میری نظریں آپ پہ ہیں, ان کی اپنے اسٹوڈنٹس میں, میں تو آپ سب کو دیکھنا چاہتی ہوں, سچی بات ہے, میرے یہ پیار کی انتہا ہے کہ میں کسی کو اس کلاس میں دیکھوں, اللہ جانتا ہے, کیونکہ میرا اپنے ساتھ بھی یہی پیار ہے, مجھے اپنے اوپر سب سے پیار تب آتا ہے جب میں ادھر ہوتی ہوں. تو کوئی چیز سوچیں کہ آپ کے رستے کی کیا رکاوٹ ہے, اور قرآن پڑھ کے سیکھنے کا کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ یہ جنت میں جا کے بھی نہیں ملے گی, اونلی یہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں کیا کہا کہ جب لوگ قبر میں جہنم میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے بھائی کیا ہوا, یہ تم روز رات کو پڑھتے ہوں گے سورۃ ملک, مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور کم از کم اس قسم کی سنت ہے جس میں پڑھنے پڑھانے کا اس کو تو ہم سامنے رکھتے ہی ہیں نا. تو اس کی ایک آیت میں کیا آتا ہے, لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم عقل رکھتے, سمجھتے, پڑھتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. یقین کریں کہ سننے پڑھنے سے ہی اپنی غلطیاں پتہ لگتی ہیں. آج جو موضوع تھا اس کی مطابقت سے ایک سلائیڈ ہے جو صرف تھاٹ پروکنگ ہے, یہ دے کے تاکہ ہم نے جس موڈ میں لیکچر شروع کیا تھا اسی پہ اینڈ ہو. پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو, انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ میں آپ کو ایڈ کیا جائے گا, سسٹر نیلا بھی ادھر ہیں, یہ واٹس ایپ کلاسز کو ہیلپ کرتی ہیں, تو بعد میں اگر آپ میں سے کسی کو انفارمیشن لینی ہے کوئی بھی, یا یہ خود بھی آنا چاہیں تو آپ لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ سلائیڈ بھیج دیں گے, اس میں اس پہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول, دوسری طرف لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی, کراس لگا ہوا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس دن کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ میں 12 ربیع الاول کے دن قیامت کا منظر تھا. یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بے حد غمگین ہوئے, جب دنیا میں وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہوش کھو بیٹھے, وہ دن جس کے بعد کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں وفات پا گئے. ابلیس خوشی سے کھل اٹھا اور صحابہ کرام غم سے مرجھا اٹھے. یہ جتنے جملے بولے نا ان کے نیچے حدیث کے ریفرنسز بھی لکھے ہوئے ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کی خوشی ابلیس کے سوا اور وہ سارے ہی مناتے ہیں، یعنی جو نہیں مناتے وہ ابلیس کے ساتھی ہی ہیں. تو سوچیں کہ ہم سب بھی آج کے اس سارے لیکچر کے بعد کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہوں گے، میری دوست فلاں اس کے گھر ہے وہ بلاتی ہیں. میں آپ کو اپنے لیے تو اوپنلی کہہ سکتی ہوں، پورا مہینہ اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ درس بھی رکھ میلاد بھی کرتے ہیں بلاتے ہیں، آپ اپنے ان پہ کسی کے میلاد میں 10-15 منٹ کی چھوٹی سی ٹاک رکھانا چاہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے میں حاضر ہوں. اگر میرا ادھر کوئی کلاس کا وقت نہیں ہوا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ جانے کو بھی تیار ہوں. یہ پیغام عام کریں، محبت سے عام کریں، نفرتوں کو ہوا نہ دیں. آج جہاں سے جا کے سب کو کہہ دیں یہ غلط وہ، حالانکہ آپ نے کچھ ایسا سنا ہی نہیں ابھی، جو آپ نے سنا ہے نا وہ ان کو سنا دیں. باہر سیڈیز رکھی ہوتی ہیں، لے کے جائیں، پھلائیں ان کو، عام کریں، سنیں، آگے دیں، دوسروں کو سنیں، تاکہ یہ اویئرنیس کب پھیلے گی؟ جب علم آئے گا. آپ کچھ کہیں گے نا لوگ آپ کو بھی فتویٰ دے دیں گے، تمہیں کیا ہو گیا، کدھر چلی گئی، وہ ہو گیا. تو ہم بھی تو کسی کی بات سن کے نہیں مانتے نا، جب تک ہمارا دل نہیں کھلتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے اندھیرے دور ہوں. اللہ کے نبی جب آئے تھے اس سے بھی زیادہ اندھیرے تھے، وہ تو ایک اندھیرے، اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ لیا ہے. تو اس کے لیے اپنا اپنا کام کریں، اپنی زندگی کے آرام کو چھوڑ کر تھوڑا سا وقت کریں. صحابہ کی طرح ہمیں جنگیں نہیں لڑنی پڑتی، ہمارے راستوں میں کوئی پتھر اور کانٹے نہیں ہیں، نرم گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، گرم ماحول میں ہوتے ہیں. بلیف میں ادھر روز 100 لوگوں کے قریب کھانا بنتا ہے، فریش کھانا روز یہاں کینٹین میں ہوتا ہے، دن رات میں، صبح شام کی کلاسز میں دیکھیں، رات 7-8 بجے تک لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. یہ دین کی برکت ہے نا، تو میں کیوں محروم رہوں؟ تو اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کر دے. آپ میں سے کوئی اپنی خوشی سے شیئرنگ کرنا چاہتا ہے جو آج آئے ہوئے ہیں؟ ٹائم تو اب اوپر ہو ہی گیا ہے، میرا تو لیکچر وقت پہ تھا لیکن ظاہر ہے شیئرنگز میں ہوا ہے. میرا دل کر رہا ہے آپ میں سے ایک دو سسٹرز شیئرنگ کریں کہ آپ نے آج کے پورے پروگرام میں کیا فیل کیا. آپ کا نام مجھے نہیں پتا لیکن آپ بہت غور سے سن رہے تھے پورا لیکچر. سسٹر آپ آنا چاہیں گے ادھر، کمر ان کو مائک دیجیے، آپ نے پیک بھی کر دیا جی، کیونکہ آپ میرے لیے ایک نیا فیس ہے جی. پلیز وہ بات کہیے جو آپ کے دل میں ہے، کوئی ہماری، ہم ناراض نہیں ہوتے، ہم خوش نہیں ہوتے، آپ اپنی خوشی سے جو بھی کہیں گے. وعلیکم السلام،
میرا نام شازیہ نبمیر ہے اور میں بیرون سے آئی ہوں اور فرسٹ ٹائم اس کلاس میں آئی ہوں. شمائلہ نے مجھے پہلے بھی آپ کے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ان کے لیکچرز میں ویسے بھی سنتی رہی ہوں، شمائلہ بھی مجھے سینڈ کرتی رہی ہیں. اور ابھی یعنی کہ جو آپ کے پروگرام کا لیکچر تھا اس سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے تو آپ آؤ، تو ویسے میرے دل میں خواہش ہوئی کہ انسان کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور علم تو ایسی چیز ہے کہ انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے، کہ آپ گود سے لے کے گور تک جب چاہیں، لیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، سیکھنا چاہیں، صرف طلب ہونی چاہیے انسان. تو وہی بات ہے جیسے انہوں نے، یہ بہن کا نام ہے، سوری بھول چکی ہوں، جنہوں نے بتایا کہ میرے اندر ایک جذبہ ہے یا ایک بے چینی ہے، یعنی کہ ایک جستجو ہے کہ میں کیوں پرسکون نہیں ہوں. الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہم لوگوں کو فیض یاب کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ دل میں کیوں بے چینی ہے، کیوں سکون ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا کمی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں؟ بس وہی طلب ہے. ادھر ادھر جاتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں پروگرامس وغیرہ، اپنے طور پہ بھی کوشش کرتی ہوں. آج آپ کے پروگرام میں بھی آئی، بہت اچھا لگا. اور میری فیلنگس یہ تھیں کہ ان بہنوں کو دیکھ کے ان کا کانفیڈینس جو ان کا امپروو ہوا ہے یہاں آنے کے، یہاں آنے سے پہلے وہ کیا تھیں اور یہاں آنے کے بعد وہ کیسی ہوئیں، تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وقت بھی لے کے آئے کہ جب میں بھی فل کانفیڈینس کے ساتھ، یعنی کہ دوسروں کو جو دین کا میسیج ہے، جو ہمارا یعنی کہ دعوت کا ہے، کہ ہم بھی یعنی کہ کہہ سکیں، دوسروں کو بتا سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے یعنی جو ہم پہ یعنی کہ جو حق ہے اس کا، کہ ہم یعنی دین سیکھ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ میری اصلاح ہو.
آمین. ہم سب.
اور جو ایک انسان کا مقصد تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو پا لیں، اس کی صحیح جو حقیقت ہے اس کو پا لیں، اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ یہ دعوت دوسروں تک بھی پہنچ جائے. بہت اچھا لگا،
جزاک اللہ خیر، واسن جزا، شکریہ.
اور یہ آ رہی ہے
ان شاء اللہ. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ جو پنک اسکارف میں آپ، یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ان نوشک؟ مجھے پتا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ تو اردو کا ہی ہونا ہے. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اوکے چلے ٹھیک ہے. چلیے پھر آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما, ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں آئندہ کے لیے بہترین طریقے سے اس کام کو کرنے والا بنا دے. جو بھی ہم نے یہاں کہا سنا اس پہ ہمیں سب سے زیادہ خود عمل کرنے والا بنا دے. سب ساتھیوں کے دلوں میں جو جائز حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. جو عذر ہیں یا اللہ ان کے قبول فرما. یا اللہ جو ہماری اس راستے کی رکاوٹیں ہیں تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یا اللہ آج کا یہ چھوٹا سا ڈسپلے کہیں قیامت کا بہت بڑا ڈسپلے نہ بن جائے اور حسرت اور محرومی کا شکار ہوں قیامت کے دن. اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں, اس کے بعد تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یا اللہ ہر دن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم آج کے اس دن سے وہ لے لیں جو کل نہیں لے سکے. یا اللہ اس ڈھلتی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ وقت تو گزر ہی جائے گا, کام تو ہو ہی جائیں گے. زندگی آج ہے تو ہمارے 10 کام ہیں. آج ہم اپنے راست منظر سے ہٹتے ہیں, کوئی اور ہماری جگہ لے لے گا. ہمارے بچوں کو دیکھنے والا بھی کوئی آ جائے گا, ہمارے شوہروں کی دیکھ بھال کرنے والی بھی کوئی ہوگی, لیکن ہم اپنے اعمال کی پٹاریوں کے ساتھ قبروں میں ہوں گے. یا اللہ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا. یا اللہ ہم تیرے اس راستے میں سچائی کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں, ہمیں یہ ثابت کرنے والا بنا. یا اللہ جو بھی سسٹرز یہاں ہیں, جو گھروں میں ہیں, جو بعد میں بھی سنیں گے, یا اللہ ان کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما. جنہوں نے بھی اس میں مدد کی, کوشش کی, ایک لفظ سے کی, اور جس طرح سے وقت اور محنت جو بھی لگتی ہے, یا اللہ تو بے حساب اجر عطا فرما. یا اللہ میں لوگوں سے کچھ نہیں لینا, یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارا قبول کر لے. اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج کے اس اندھیروں کے دور میں ہم اپنے حصے کی شمع پھیلائیں یا شمع جلا دیں. یا اللہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یا اللہ آج ہماری بھی یہی تمنا ہو جائے کہ ہم اندھیروں میں روشنیوں کا پیغام بنائیں. یا اللہ یہ معصوم بچے جو آج ہماری گودوں میں ہیں, کل یہ ہمیں بد دعائیں دیں گے اگر ہم نے آج ان کو ان کے مالک سے نہ جوڑا. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی مائیں بن کے ان کی اچھی تربیت کر سکیں. اور یا اللہ جو پاکستان میں اور اپنے اپنے ملکوں میں اپنے بہن بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ کو ایک تحریک کے طور پر اس کتاب کو سمجھنے والا بنا دے. اور یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعا کے لیے کہا اور یہاں جو نہیں بھی کہہ پا رہے ان کو بھی یا اللہ توفیق دے, ان کی بھی دعائیں قبول فرما. اور جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا بنا. آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. کل آپ کی شفاعت کا مستحق بنانا. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید لگا رہے ہوں اور وہ ہماری شکایت لگانے لگ جائیں کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. یا اللہ اس قرآن کو پکڑ کر چھوڑنے والا نہ بنانا. یا اللہ ہم دنیا میں بھی تو بہت بہترین لینا چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں وہاں کا بھی بہترین دے. یا اللہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے استادوں پہ بھی اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں, ان کی اولادوں, ان کی نسلوں, ان کے گھر والوں پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ پوری امت پہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے داعی دین بنا. یا اللہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا. یا اللہ ہم ادھر سے اتنی دنیا کی آسائشیں لیتے ہیں, یا اللہ ہمیں بھی ان کی آخرت کی فکر لگا دے, درد پیدا کر دے جو نبی کے دل میں تھی, کہ فلا اللہ کا باخ نفس کا اللہ ساری ہم علم یومن بحاظ الحدیث یا صفح. یا اللہ تڑپ لگا دے, طلب لگا دے, بیکار زندگی سے نفرت دے دے, با مقصد زندگی گزارنے والا بنا, وقت کو ضائع کرنے سے بچا, سستیوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے کردار کی ہر کمی کمزوری کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یا اللہ تو قادر ہے, ہم قادر نہیں ہیں, ہم کوشش کے باوجود نہیں چھوڑ پاتے اپنی غلط چیزوں کو. یا اللہ تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر, واحسن الجزا. بہت اچھا لگا آپ سب کو مل کر. انشاءاللہ تعالی آپ سے امید ہے کہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں تو ابھی درشا کے فرض پڑھوں گی کیونکہ وقت ہو گیا ہے, تو وہ بے چینی سی لگ جاتی ہے. آپ لوگ گھومے پھرے ہیں, جن کا دل کرتا ہے پڑھنا ہے وہ ادھر ساتھ مل جائیں, باقی جو گھر جا کے پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے.
جو آج میں لے کے جا رہی ہوں یہاں سے سیکھ کر, وہ یہ ہے کہ میں نے آج پہلی بار یعنی وہ نماز سنی ہے جو جس میں آپ نے پورا کو پڑھا ہے, کیونکہ ظہر عصر کی سنتے تھے نا, تو اس میں نہیں بولتے سارا پڑھتے. آج آپ نے جو پڑھا ہے نا الحمدللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو آپ نے سورتیں پڑھی ہیں, میں نے اللہ مجھے معاف کرے گا, میں الحمدللہ کے بعد ساتھ ہی قل ہو اللہ پڑھنی ہوں یا الم نشرح لک صدرک, تو میں بسم اللہ نہیں پڑھتی تھی.
ہاں جی پڑھتی, سورت کے شروع پہ پڑھنی.
جی آج آپ کے تھرو آج مجھے